आगे सबक देखिए भाई। बाबुल ईला व ईदा काल अर्रजुलु लिम्रअतिही वल्लाही ला अक़रबु की औ काल वल्लाही ला अक़रबु की अरबअत अशहुरिन फहुवा मूलिन लिक़ौलिही तआला लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम तरब्बसु अरबअति अशहुर अल आया فإن وطئها في الأربعة الأشهر حنس في يمينه ولزمته الكفارة। गुज़श्ता सबक में साहिब हिदाया ने आपको बतलाया था कि अगर खावन ने अपनी बीवी को तलाक़े बाइन दी है या उसको तीन तलाक़ें दी हैं तो फिर वो किस तरह अपने खावन के लिए हलाल होगी। साहिब हिदाया ने बतलाया कि अगर खावन ने एक या दो तलाकें दी हैं बीवी को तो फिर बीवी अभी भी खावन के लिए हलाल है, यानी खावन इसके साथ दोबारा निकाह कर सकता है भाई। लेकिन अगर तीन तलाकें दे दी तो फिर उसके बाद खावन के लिए इसे निकाह जायज नहीं, इल्ला ये कि दरमियान में कोई और खावंद आए और वो फिर इस औरत के साथ सोहबत भी करे और फिर उसका किसी वक्त इंतकाल हो जाए या वो इस बीवी को तलाक दे दे तो फिर पहले खावंद के लिए इस औरत से निकाह जायज हो जाएगा भाई। और दलील जिक्र की थी कि कुरान में अल्लाह फरमाते हैं फइन तल्लकहा फला तहिल्लु लहू मिन बादु, कि अगर खावन बीवी को तीसरी तलाक भी दे दे तो फिर वो औरत उस खावन के लिए हलाल नहीं है। हत्ता तन की हजौजन गैरहू, यहां तक कि ये किसी और खावन से निकाह कर ले भाई। तो इस पर इश्काल हुआ कि यहां पर तो सिर्फ निकाह का जिक्र है और ए अहनाफ आप तो सोहबत की भी कैद लगाते हैं कि दूसरे खावंद का सोहबत करना भी जरूरी है। तो मैंने आपको बतलाया था कि अगर यहां तनकीहा के माने निकाह के करें तो निकाह तो जौजन से भी मालूम हो रहा है, तो इस सूरत में ये जो जौजन है ये ताकीद हो जाएगा माकबल के लिए, और हालांकि तासीस औला है ताकीद के मुकाबले में, यानी कोई लफ्ज का कोई नया माना किया जाए या यूं कहें कि इफादा औला है इआदे के मुकाबले में। इआदा ये है कि एक लफ्ज से जो माना समझ में आ रहा है दूसरा लफ्ज भी उसी माना का फायदा दे, तो इसको कहते हैं इआदा, गोया एक ही माना को आपने दोबारा लौटाया, उसको दोबारा जिक्र किया। और अगर दूसरे लफ्ज का नया माना किया जाए तो इसको कहते हैं इफादा, कि इसने एक नया फायदा दिया है, और इफादा औला है इआदा के मुकाबले में। तो लिहाजा यहां पर भी निकाह का माना तो जौज से ही मफहूम हो रहा है, लिहाजा तनकीहा का माना निकाह के नहीं करेंगे बल्कि इसका माना वती के करेंगे, वती और सोहबत के भाई। तो इशारतुन्नस से मालूम हो गया कि दूसरे खावंद का वती करना भी जरूरी है भाई। साहिब हिदाया ने दूसरी दलील भी जिक्र की थी, हदीस मशहूर के जरिए भी सोहबत की शर्त साबित है भाई, और वो हदीस जिक्र की साहिब हिदाया ने कि हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को तीन तलाकें दे देता है और फिर वो औरत जो है किसी और से निकाह करती है और फिर बगैर सोहबत के वो तलाक दे देता है तो क्या सिर्फ दूसरे खावन के सिर्फ निकाह कर लेने से बगैर सोहबत के क्या ये बीवी पहले खावन के लिए हलाल हो जाएगी? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, ये पहले खावन के लिए हलाल नहीं होगी यहां तक कि ये उस दूसरे खावन से लज्जत जिमा हासिल कर ले भाई। और साहिब हिदाया ने बतलाया कि इस मसले में किसी का भी इख्तिलाफ नहीं है, तमाम फुकहा के नजदीक खावंदे सानी की सोहबत शर्त है। सिर्फ सईद इब्ने मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो जलीलुल कदर ताबई गुजरे हैं उन्होंने इस मसले में इख्तिलाफ फरमाया है, लेकिन उलमा ने जिक्र फरमाया है कि उन्होंने भी बाद में जमहूर के मजहब की तरफ रुजू फरमा लिया था कि दूसरे खावंद की सोहबत भी जरूरी है। और साहिब हिदाया ने यह भी बतलाया कि खावंद सानी का इंजाल शर्त नहीं है, इसलिए क्योंकि यह इंजाल एक शर्त जायद हो जाएगी और इस पर कोई दलील मौजूद नहीं, जबकि इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि खावंद सानी का इंजाल भी जरूरी है भाई। और फिर आगे साहिब हिदाया ने बतलाया कि सभी ये मुराहिक यानी वो बच्चा जो बालिग होने के करीब है वो भी तहलील के अंदर बालिग आदमी की तरह है, यानी उसकी सोहबत से भी औरत पहले खावन के लिए हलाल हो जाएगी भाई, और अलबत्ता ये शर्त है कि उसको शहवत आती हो भाई, इसलिए क्योंकि हदीस के अंदर जानिबैन से लज्जत उठाने का जिक्र है, और जानिबैन से लज्जत उठाना तभी हो सकता है जब ये सबी ये मुराहिक जो है इसको भी शहवत आती हो गई। और साहिब हिदाया ने फिर बतलाया कि अगर एक शख्स की बीवी बांधी थी और उसने उसको दो तलाकें दे दी और हुरमत मुगल्लजा आ गई, तो फिर खावंद सानी के जरिए ही ये पहले खावंद के जरिए हलाल हो सकती है, आका की वती के जरिए ये पहले खावंद के लिए हलाल नहीं होगी, क्योंकि कुरान में निकाह का जिक्र है भाई। और फिर साहिब हिदाया ने बतलाया कि अगर तहलील की शर्त पर कोई शख्स निकाह करता है, अगर तहलील की शर्त पर कोई शख्स किसी औरत से निकाह करता है, तो इस सूरत में ये निकाह मकरूह है, ये निकाह मकरूह है। अलबत्ता ये शख्स मुहल्लिल बन जाएगा, बीवी पहले खावंद के लिए हलाल हो जाएगी, लेकिन इस तरह निकाह करना मकरूह है, क्योंकि हदीस में आया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है लअनल्लाहुल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहू, के मुहल्लिल और मुहल्लल लहू पर अल्लाह की लानत हो। तो देखो लानत का जिक्र है। तो बहुत से फुकहा फरमाते हैं कि तहलील की शर्त पर निकाह ही नहीं होगा, क्योंकि हदीस में लानत का जिक्र है, जबकि इंदल अहनाफ निकाह हो जाएगा, क्योंकि हदीस में उस शख्स को मुहल्लिल कहा गया है, और अगर ये निकाह ही नहीं होता तो फिर लानत का क्या माना, फिर तो लानत की कोई वजह नहीं बनती भाई। मालूम हुआ निकाह भी हो जाता है और ये औरत भी पहले खावंद के लिए हलाल हो जाती है भाई। फिर उसके बाद साहिब हिदाया ने फरमाया था वहादा हुआ महमिलुहू, और यही इस हदीस का महमिल है। इससे क्या मुराद है, मैंने बतलाया, बास फुकहा फरमाते हैं कि ये जो तहलील की शर्त पर निकाह किया तो ये है हदीस का महमिल, यानी इस हदीस में मुहल्लिल पर लानत का जिक्र है, लेकिन बिल इत्तेफाक हर मुहल्लिल मुराद नहीं है, हर मुहल्लिल मुराद नहीं, इसलिए क्योंकि ये औरत अगर बाद में किसी और खावन से निकाह करती है और उसके पास कई साल रही, फिर उसका इंतकाल हुआ या उसने तलाक दे दी, तो ये फिर पहले खावन के लिए हलाल हो गई। तो ये जो बीच में खावंद आया था ये भी मुहल्लिल है, लेकिन बिल इत्तेफाक ये मुराद नहीं है इस हदीस से, इसके बारे में लानत का जिक्र नहीं है। तो फिर कौन सा मुहल्लिल जिक्र है, तो साहिब हिदाया बतला रहे हैं वहादा हुआ महमिलुहू, ये जो तहलील की शर्त पर निकाह करता है ये है इस हदीस का महमिल भाई, यानी हदीस इस मुहल्लिल और मुहल्लल लहू पर महमूल है भाई। जबकि बाज उलमा फरमाते हैं कि साहिब हिदाया की इस इबारत का मतलब यह है कि जो मतन में आया कि यह वाला निकाह मकरूह है, बाज फुकहा तो फरमाते हैं यह निकाह मुनाकिद ही नहीं होगा जो तहलील की शर्त पर किया जाएगा। तो ये शारहीन फरमाते हैं कि यह हादा हुआ महमिलुहू के जरिए साहिब हिदाया इस मतन में जो मकरूह का हुक्म लगाया गया इसकी तरफ इशारा है कि हदीस का महमिल क्या है, कि ये निकाह मकरूह है, ये फासिद नहीं है भाई, ये हदीस का महमिल है। और इसी तरह मैंने बतलाया कि बाज उलमा फरमाते हैं कि इस हदीस का महमिल वो मुहल्लिल है जो उजरत लेकर तहलील करता है भाई, चुनांचे इसकी दलील भी मौजूद है कि और हदीसों में ऐसे शख्स को तैसे मुस्तआर कहा गया है। तैस मैंने बतलाया बकरे को कहते हैं, लेकिन मुराद नर जानवर है, और तैसे मुस्तआर यानी ऐसा नर जानवर जिसको आरियतन मांगा गया हो, जिसको, तो इसको तैसे मुस्तआर कहा गया है। तो ये हदीस का महमिल है भाई। तो बहरहाल इंदल अहनाफ तहलील की शर्त पर भी निकाह हो जाएगा, क्योंकि निकाह शुरूते फासिदा से बातिल नहीं होता भाई, तो शर्त बातिल हो जाएगी और निकाह सही हुआ, और निकाह सही के बाद दुखूल पाया गया, जब निकाह सही के बाद दुखूल पाया गया तो ये औरत पहले खावंद के लिए हलाल हो गई भाई। उसके बाद साहिब हिदाया ने मसला जिक्र फरमाया कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को एक या दो तलाकें दे दे, आजाद औरत है और उसको एक या दो तलाकें दे दी, तो अभी भी खावंद के लिए उसके साथ निकाह जायज है, लेकिन अगर दरमियान में कोई और खावंद आ गया तो फिर पहले खावंद के पास जब यह औरत आएगी तो पहला खावंद कितनी तलाकों का मालिक होगा। तो शेखैन रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये जो ज़ौज सानी है ये मुहल्लिल है, इसकी वजह से नई हिल्लत आएगी, और जब नई हिल्लत आई है तो पहला खावंद दोबारा तीन तलाकों का मालिक होगा। जबकि इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि आयत के अंदर खावंद सानी के साथ निकाह को गाया करार दिया गया है आदम हिल्लत का, और अदम हिल्लत तो तब आती है जब हुरमत गलीजा आ जाए, हुरमत मुगल्लजा आ जाए, यानी तीन तलाकें आ जाएं। जब तीन तलाकें आएंगी तो फिर खावंदे सानी क्या बनेगा? मुहल्लिल बनेगा। मालूम हुआ ये जो खावंदे सानी है ये हुरमत गलीजा को खत्म करता है, और यहां तो पहले खावंद ने सिर्फ एक या दो तलाकें दी हैं, तो यहां तो हुरमत गलीजा ही नहीं आई। जब हुरमत गलीजा ही नहीं आई तो खावंद सानी उसको खत्म करने वाला भी नहीं हुआ भाई, क्योंकि पहले एक चीज का सबूत तो हो फिर उसका खत्म करना भी हो सकता है। तो यहां आप खावंद सानी आने के बावजूद खावंद सिर्फ बाकी तलाकों का मालिक होगा। अगर पहले उसने एक तलाक दी थी तो अब जिंदगी भर दो तलाकों का मालिक है, और अगर पहले इसने दो तलाकें दी थी तो अब जिंदगी भर सिर्फ एक ही तलाक का मालिक है। जबकि शेखैन रहमहुमल्ला फरमाते हैं कि नहीं, हदीस के अंदर इस खावंद को मुहल्लिल कहा गया है। लअनल्लाहुल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहू, हदीस के अंदर इस खावंद सानी को मुहल्लिल कहा गया है। और मुहल्लिल उसको कहते हैं जो हिल्लत को साबित करे, जो हिल्लत को साबित करे। मालूम हुआ यह नई हिल्लत साबित कर रहा है, क्योंकि अगर खावंद ने सिर्फ एक या दो तलाकें दी हैं तो हिल्लत तो अभी भी मौजूद है, तो फिर तो इसको मुहल्लिल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह तो तहसील हासिल है भाई। मुहल्लिल का क्या माना? हिल्लत को साबित करने वाला, और हिल्लत तो पहले से ही मौजूद है, तो यह तो हिल्लत को साबित करने वाला ना हुआ। जब यह हिल्लत को साबित करने वाला ना हुआ तो फिर तो यह मुहल्लिल ही नहीं है, हालांकि हदीस में तो इसको क्या कहा गया है? मुहल्लिल। मालूम हुआ यह नई हिल्लत साबित करता है, वही पुरानी हिल्लत बाकी नहीं रहती, वो खत्म हो गई, नई हिल्लत आ जाती है, और जब नई हिल्लत आ गई तो अब खावंद दोबारा तीन तलाकों का मालिक होगा भाई। और आखिर में साहिब हिदायत ने जिक्र फरमाया कि अगर खावंद ने बीवी को तीन तलाकें दे दी और औरत इद्दत गुजार कर चली गई और फिर कुछ अरसे के बाद आई और आकर कहा मैंने दूसरी जगह निकाह कर लिया था और दूसरे खावंद ने मेरे साथ सोहबत भी कर ली और फिर उसके बाद मैंने इद्दत भी गुजारी है तीन हैज, और उसके बाद अब मैं आपके पास आई हूं, आपसे मैं दोबारा निकाह करना चाहती हूं, तो कहते हैं कि अगर मुद्दत भी इतनी गुजर चुकी है कि जिसमें इतना औरत की इद्दत गुजरने का इहतमाल है और नीज खावंद का गालिब गुमान भी है कि यह औरत सच बोल रही है, तो खावंद उसकी बात कबूल कर सकता है, इसलिए क्योंकि यह एक मामला है भाई, ये निकाह की खबर दे रही है और निकाह भी क्या है? मर्द और औरत के दरमियान एक मामला होता है, तो मामले के अंदर एक शख्स की खबर कबूल की जाती है। या ये एक दीनी अमर है, या ये एक दीनी अमर है, दीनी चीज है, क्योंकि इससे औरत हलाल हो रही है पहले खावंद के लिए, तो हिल्लत और हुरमत ये दीनी चीज है, पाक या नापाक होना ये भी क्या है? दीनी चीज है, तो लिहाजा ये एक दीनी चीज की खबर दे रही है, तो इस दीनी चीज के बारे में जब कोई एक शख्स भी खबर दे और गालिब गुमान हो के वो सच बोल रहा है तो उसकी बात को कबूल किया जाएगा भाई। तो लिहाजा यहां भी खावंद इसकी बात को कबूल कर सकता है और इससे निकाह कर सकता है। अब यह अदना मुद्दत कितनी है, कितनी मुद्दत के बाद यह औरत आए तो खावंद उसकी बात को कबूल कर सकता है भाई? भाई देखो, पहली एक इद्दत तो इस औरत ने इसी खावंद के पास गुजारी थी और उसके बाद गई थी, तो लिहाजा अब दूसरे खावंद के पास निकाह करके और सोहबत के बाद फिर इद्दत गुजार कर आई है, तो इद्दत की कम से कम मुद्दत जो है इमाम साहिब के नजदीक वो 60 दिन है, और यानी 2 महीने है, और साहिबैन के नजदीक कम से कम मुद्दत इद्दत की वो 39 दिन हो सकती है, यानी 1 + 40 भाई। इमाम साहब फरमाते हैं कि हैज की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 10 दिन है, इद्दत के अंदर 3 हैज आएंगे तो ये 30 दिन इन हैजों के हो गए, और तोहर की कम से कम मुद्दत 15 दिन है तो 3 हैजों के दरमियान 2 तोहर आ गए तो 15 और 15 30, तो 30 दिन तोहर के हो गए और 30 दिन 3 हैज के हो गए तो ये 60 दिन भाई। तो कम अज कम 60 दिन के बाद ये औरत आए फिर खावंद इसकी तस्दीक कर सकता है भाई। एक इद्दत तो कहां गुजारी है? इसी खावंद के पास, उसके बाद मजीद ये 60 दिन कम अज कम गुजार कर आए, और जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि कम से कम मुद्दत इद्दत की वो 39 दिन है। वो कहते हैं, वो फरमाते हैं कि हैज की कम से कम मुद्दत 3 दिन है, तो 3 हैज जो हैं उनकी मुद्दत हो गई 9 दिन। हर हैज 3 दिन का शुमार किया जाए तो 3 हैज 9 दिन के हो गए, और तोहर की कम से कम मुद्दत 15 दिन है तो ये 3 हैजों के दरमियान 2 तोहर आ गए, तो ये 30 दिन दो तोहरों के हो गए और 9 दिन तीन हैजों के हो गए, तो ये 39 दिन बन गए भाई। तो ये कम से कम 39 दिन बाद ये औरत है फिर ही इसकी बात का एतबार किया जा सकता है। तो साहिबैन ने हैज की भी कम से कम मुद्दत का एतबार किया और तोहर की भी कम से कम मुद्दत का एतबार किया और इस तरह ये 39 दिन बनते हैं। जबकि इमाम साहब ने तोहर की तो कम से कम मुद्दत का एतबार किया लेकिन हैज की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत का एतबार किया और वो 10 दिन है भाई। अब आइए आज के सबक पर। बाबुल ईला व इदा काल अर्रजुलु लिम्रअतिहि वल्लाहि ला अक्रबुकी औ काल वल्लाहि ला अक्रबुकी अरबअत अशहुरिन फहुवा मूलिन लिकौलिहि तआला लिल्लदीन युलून मिन निसाइहिम तरब्बसु अरबअति अशहुर। भाई ईला का जिक्र आ गया। ईला मैं पहले बयान कर चुका हूं, एक दो सबक कबल इसका जिक्र आया था। याद रखो अरबी जुबान में ईला का माना है कसम खाना। आला यूली ईला अन का माना है कसम खाना। तो आला यूली ईला का माना है कसम खाना। जबकि शरीयत के अंदर ईला इसे कहते हैं कि खावन 4 माह या इससे ज्यादा मुद्दत तक बीवी के पास न जाने की कसम खा ले, यानी बीवी के साथ सोहबत न करने की कसम खा ले। तो इसको क्या कहते हैं? ईला। और याद रखो जो शख्स ईला कर लेता है उसका हुक्म अल्लाह कुरान में जिक्र फरमाते हैं कि लिल्लदीन युलून मिन निसाइहिन, और वो लोग जो अपनी बीवियों से ईला कर लेते हैं यानी उनके पास 4 महीने तक उनसे सोहबत न करने की कसम खा लेते हैं, तो उनके लिए तरब्बुसु अरबअति अशहुरिन, उनके लिए 4 माह की मुद्दत है भाई, यानी 4 माह की मोहलत है जी। उनके पास 4 माह की मोहलत है। फइन फाऊ, बस अगर वो रुजू कर लें जी। तो फइन अल्लाह गफूर रहीम, तो अल्लाह बहुत बख्शने वाले और निहायत मेहरबान है भाई। तो रुजू कर लें यानी बीवी के साथ सोहबत कर लें, जिमा कर लें। तो फुकहाए किराम फरमाते हैं कि मालूम हुआ ईला जो है, एक शख्स अगर 4 माह या इससे ज्यादा की कसम उठा लेता है कि मैं 4 माह तक बीवी के पास नहीं जाऊंगा, तो 4 महीने की उसको मोहलत दी गई है शरीयत की तरफ से। अगर 4 महीने के अंदर ये बीवी से सोहबत कर लेता है तो कसम टूट जाएगी और इसको कफारा देना पड़ेगा, और अगर 4 महीने तक इसने बीवी से सोहबत न की तो फिर इस सूरत में बीवी जुदा हो जाएगी तलाके बाइन के साथ भाई। बीवी तलाके बाइन के साथ जुदा हो जाएगी, यानी नियामत निकाह से शरीयत उस शख्स को महरूम कर देगी भाई। तो लिहाजा उलमा फुकहा फरमाते हैं कि ईला के अंदर 2 नापसंदीदा चीजों में से एक तो जरूर खावंद पर आएगी, या तो उसे कसम को तोड़ना पड़ेगा और फिर कफारा देना पड़ेगा, या फिर उसके हाथ से बीवी निकल जाएगी। तो 2 नापसंदीदा चीजों में से एक जरूर वाक़े होगी भाई। तो कहते हैं वईदा काला रजुलु लिम्रअतिही, और जब कहा किसी शख्स ने अपनी बीवी से वल्लाहि ला अक़रबु की के वल्ला मैं तुझसे सोहबत नहीं करूंगा, करीबा यक़रबु क़िरबानन, करीबा यक़रबु क़िरबानन का माना होता है सोहबत करना। वल्लाहि ला अक़रबु की, वल्लाह मैं तुझसे सोहबत नहीं करूंगा। अब देखो यहां मुद्दत नहीं जिक्र, और याद रखो जब मुद्दत को जिक्र न किया जाए कसम वगैरह के साथ तो उसको मुअब्बद शुमार किया जाता है। चुनांचे आप भी देखते हैं एक शख्स कहता है वल्लाह मैं ये काम नहीं करूंगा, देखो उसने साथ कोई कैद नहीं लगाई कि एक दिन तक नहीं करूंगा या 2 दिन तक या महीने तक नहीं करूंगा, मुतलक जिक्र किया, तो इसको मुअब्बद शुमार करेंगे। ये काम वो साल बाद भी करेगा तो हानिस हो जाएगा, 10 साल बाद भी करेगा तो ये शख्स हानिस हो जाएगा। तो मुतलक को क्या शुमार किया जाता है? मुअब्बद शुमार किया जाता है, यानी हमेशा के लिए है। तो खावन ने क्या कहा बीवी से? वल्लाही ला अकरबु की, वल्लाह मैं तुझसे सोहबत नहीं करूंगा। तो मुद्दत जिक्र नहीं की, मालूम हुआ वो मुअब्बद कसम खा रहा है हमेशा के लिए। तो कहते हैं वईदा काल अर्रजुलु लिम्रअतिही वल्लाहि ला अक़रबु की, और जब कहा किसी शख्स ने अपनी बीवी से कि वल्लाह मैं तुझसे सोहबत नहीं करूंगा, औ काला, या वो शख्स कहता है वल्लाहि ला अक़रबु की अरबअत अशहुरिन के वल्लाह मैं तुझसे 4 माह तक सोहबत नहीं करूंगा, फहुवा मूलिन, तो ये शख्स ईला करने वाला है, मूलिन इसमें फाइल है, आला यूली ईला अन फहुआ मूलिन, फहुआ मूलिन, तो ये शख्स ईला करने वाला हो गया, लिकौली ही ताला अल्लाह ताला के इस कौल की वजह से, लिल्लदीन युलून मिन निसाइम, वो लोग जो ईला कर लेते हैं अपनी बीवियों से, तरब्बुसु अरबाती अशहुरिन, उनके लिए चार माह की मोहलत है, अल आयह आई अल आयता या अल आयतु, नसब भी पढ़ सकते हैं, इकरा इल आयता, ये मफूल बन जाएगा इकरा फेल के लिए कि हमने तो कुछ हिस्सा जिक्र कर दिया, आप पूरी आयत पढ़ लीजिए, या अल आयतु मारूफतुन या अल आयतु मालूमतुन, कि ये आयत मालूम है, हमने थोड़ा सा हिस्सा पढ़ दिया। फइन वती अहा फिल अरबातिल अशहुरी, अगर खावन ने बीवी के साथ सोहबत कर ली चार माह में, हानिसा फी यमीन ही, तो ये खावन हानिस हो जाएगा अपनी कसम में, वलजिमत हुल कफारत, और इस खावन पर कसम का कफारा लाजिम हो जाएगा, लिअन्नल कफारत मूजबुल हिंसी, मूजब का माना है मुक्तजा या हुक्म, हुक्म मुक्तजा या हुक्म, जो भी आप तर्जमा कर लें, लिअन्नल कफारता मूजबुल हिंसी, इसलिए क्योंकि कफारा जो है यह हानिस होने का मुक्तजा है। हानिस होना किस चीज का तकाजा करता है? कफारे का। हानिस हो जाए कोई शख्स कसम तोड़ दे तो यह कफारे का तकाजा करता है। तो कहते हैं लिअन्नल कफारता मूजबुल हिंसी, इसलिए क्योंकि कफारा जो है यह खानिस होने का मुक्तजा है, वसकतल ईला, और ईला साकित हो जाएगा। इसने तो क्या कसम खाई थी कि वल्ला मैं तुझसे चार माह तक सोहबत नहीं करूंगा, तो अगर सोहबत कर ली दरमियान में तो खानिस हो गया, कफारा भी देगा और ईला साकित हो गया। ईला क्या हुआ? साकित हो गया, क्योंकि कसम खुल गई, कसम खत्म हो गई भाई, उस कसम को उसने तोड़ दिया, हानिस हो गया है भाई। तो कहते हैं वसकतल ईलाउ, और ईला भी साकित हो गया, लिअन्नल यमीन तरतफ़ु बिल हिंसी, इसलिए क्योंकि यमीन जो है वो उठ जाती है हानिस होने से, यानी खत्म हो जाती है हानिस होने से, व इल्लम यक़रबहा हत्ता मज़त अरबातु अशहुरीन, और अगर खावन ने बीवी से सोहबत न की यहां तक कि चार महीने गुजर गए, बानत मिन्हु बितत्लीक़तिन, तो यह औरत बाइना हो जाएगी खावन से भी तत्लीकतिन, एक तलाक के साथ, यानी एक तलाक बाइन इसको हो जाएगी भाई। वकाल शाफियु रहमहुल्लाह ताला तबीन भी तफरीकिल काजी, भाई हमारे नजदीक तो चार माह गुजरेंगे तो खुद बखुद तलाक बाइन हो जाएगी, औरत खावन से जुदा हो जाएगी भाई, अब वो इद्दत गुजारे और फिर जहां मर्जी निकाह कर ले। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं नहीं, चार माह के गुजरने के बाद भी औरत खावन से जुदा नहीं है, बल्कि उसके बाद फिर देखा जाएगा खावन उसके साथ सोहबत करता है या उसको अपने से जुदा करता है। अगर उसके बाद भी खावन सोहबत नहीं करता या उसको तलाक नहीं देता तो फिर वो काजी के पास जाएगी और फिर काजी जो है जुदाई का फैसला करेगा भाई। तो हमारे नजदीक चार माह बाद औरत खुद बखुद जुदा हो जाती है और उनके नजदीक काजी के पास जाना पड़ेगा भाई। तो कहते हैं वकाल शाफियु रहमहुल्लाह ताला तबीन भी तफरीकिल काजी, की औरत जुदा होगी काजी के जुदा करने से, लिअन्नहु मानिउ हक्किहा फिल जिमाई, इसलिए क्योंकि खावन जो है इस औरत के हक को रोकने वाला है, फिल जिमाई जिमा में, जिमा में औरत का भी हक है, सिर्फ खावन का हक नहीं है बल्कि औरत का भी हक है, तो खावन उसके इस हक को रोकने वाला है। फयनूबुल काजी मना बहूफी तसरीह, तो काजी उसका नाइब हो जाएगा, उसका कायम मकाम हो जाएगा, फी तसरीह, तसरीह बिल एहसान में। कुरान में अल्लाह क्या फरमाते हैं? अत्तलाक मर्रतानी, के रजई तलाकें दो मरतबा हैं। फइमसाकुम बि मारूफिन औ तसरीहुम बि एहसान, फिर उसके बाद अच्छे तरीके से बीवी को रोकना है और तसरीहुम भी एहसान या एहसान के साथ उसको रुख्सत करना है। तो यह सिर्फ तलाक के साथ यह हुक्म नहीं है, यह वैसे ही खावन के लिए यही हुक्म है। अल्लाह ने उस खावन को इख्तियार दिया है दो चीजों में से एक का, या तो वह बीवी को अच्छे तरीके से जाब्ते के मुताबिक रोक कर रखे जैसे माशरे में बीवी को रखा जाता है, तो यह है इमसाक बिल मारूफ, अच्छे तरीके से रोकना, यूं को जाबते और कानून के मुताबिक बीवी को रोकना जो मारूफ जाबता है लोगों के दरमियान। और तसरीह बिल एहसान, या तसरीह बिल एहसान पर अमल करे, अगर नहीं रखना चाहता तो उसको अच्छे तरीके से रुख्सत कर दे, एहसान के साथ उसको रुख्सत कर दे। तो यह सिर्फ तलाक के साथ खास नहीं है बल्कि यह हुक्म आम है। खावंद को शरीयत ने दो चीजों का इख्तियार दिया है, बीवी को रखना है तो अच्छे तरीके से रोक कर रखे, मारूफ तरीके से जैसे माशरे में रखा जाता है, तो उस तरह जाब्ते और कायदे के मुआफिक अच्छे तरीके से बीवी को रखे, और अगर अच्छे तरीके से बीवी को नहीं रखना चाहता फतसरी हम भी एहसान, तो उसको एहसान के साथ नेकी के साथ रुखसत कर दे। बाज लोग बीवी को रखते भी नहीं और उसको तलाक भी नहीं देते, उसको मुअल्लक करके रखते हैं। भाई इस खावंद ने भी उसको बीवी की तरह नहीं रखा हुआ और वो तलाक भी नहीं दे रहा कि वो आगे कहीं और निकाह कर ले, तो इससे अल्लाह ताला मना फरमा रहे हैं। तो लिहाजा खावंद को दो चीजों में से एक का इख्तियार है, या तो वह इमसाक बिल मारूफ पर अमल करे, अगर उस पर अमल ना कर सके तो फिर दूसरी सूरत यही है कि उसको तस्रीह बिल एहसान पर अमल करना पड़ेगा और बीवी को एहसान के साथ रुखसत करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। और यहां पर यह शख्स इमसाक बिल मारूफ पर अमल नहीं कर रहा, अच्छे तरीके से मारूफ जाब्ते के मुताबिक बीवी को नहीं रोक रहा, जब ये मारूफ तरीके से बीवी को नहीं रोक रहा तो काजी इसका नाइब बन जाएगा और वो काजी तसरीह बिल एहसान कर देगा खावंद की तरफ से, काजी उसका नाइब बन जाएगा और तसरीह बिल एहसान पर अमल कर देगा, यानी औरत को जुदा कर देगा, रुखसत कर देगा। तो कहते हैं फयनूबुल काजी मना बहू फी तसरीही, तो काजी जो है इसका कायम मकाम हो जाएगा तसरीह में यानी रुखसत करने में, कमाफिल जब बिवल उन्नति, जैसे कि मजबूब होने और इन्नीन होने में है। मजबूब ये बात पहले भी गुजर चुकी भाई, मजबूब वो शख्स जिसका आलय तनासुल कटा हुआ हो, और इन्नीन कहते हैं नामर्द भाई जो औरत के साथ सोहबत पर कादिर ना हो भाई। तो जैसे मजबूब और इन्नीन के मसले के अंदर काजी उनका नाइब बनकर तसरीह बिल एहसान पर अमल करता है, एक औरत है उसने एक शख्स से निकाह किया तो पता चला ये तो मजबूब है, तो औरत काजी के पास चली गई, तो काजी जो है तसरीह बिल एहसान पर अमल करेगा क्योंकि ये शख्स इमसाक बिल मारूफ पर अमल नहीं कर सकता, जब नहीं कर सकता तो तसरीह बिल एहसान में काजी उसका नाइब होकर औरत को रुखसत कर देगा। इसी तरह आइनीन के अंदर भी काजी करेगा, लेकिन आइनीन के अंदर काजी उसे एक साल की मोहलत देगा कि वह अपना इलाज करवा ले, अगर एक साल के अंदर वो अपना इलाज करवा लेता है और बीवी के साथ सोहबत पर कादिर हो जाता है तो फिर तो जुदाई नहीं करवाई जाएगी, वरना काजी वहां भी जुदाई करवा देगा। तो कहते हैं कमाफिल जब बिवल उन्नति, जैसे कि मजबूब होने और आइनीन होने में है कि उसके अंदर भी काजी खावंद का नाइब होकर रुखसत करवा देता है, अलबत्ता मजबूब में मुद्दत नहीं देगा क्योंकि मुद्दत देने का फायदा ही नहीं, और इन्नीन के अंदर मुद्दत देगा क्योंकि वहां इलाज का इम्कान है भाई। वलाना, अब हमारी दलील आ गई, वलाना और हमारी दलील यह है कि अन्नहु ज़लमा हा बिमन हक़िहा, कि खावंद ने इस औरत पर जुल्म किया है बिमन हक़िहा, इसका हक रोक कर, यानी इसके साथ वो सोहबत नहीं करता और सोहबत तो बीवी का भी हक है, तो खावंद ने इसका हक रोक कर इस पर जुल्म किया है। फजाज़ाहु शरउ बिज़वाली निअमतिन निकाही, तो शरीयत ने उसको बदला दिया है बिज़वाली निअमतिन निकाही, नियमत निकाह के खत्म होने के साथ, इंदा मुज़ी हादिहिल मुद्दत, इस मुद्दत के गुजर जाने पर, यह मुद्दत जिस वक्त गुजर जाएगी तो शरीयत इसको क्या बदला देगी, नियमत निकाह जायल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। وهو المأسور عن عثمان وعلي والعبادلة الثلاثة وزيد بن ثابت رضوان الله عليهم أجمعين وهو المأسور اور یہی منقول ہے عن عثمان وعلي حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے وعلي اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے والعبادلة الثلاثة اور عبادلہ ثلاثہ سے عبادلہ جمع ہے عبداللہ کی अबादिला जमा है अब्दुल्लाह की भाई और इससे मुराद तीन सहाबा हैं तीन फुकाहा सहाबा जिनका नाम अब्दुल्लाह है भाई एक हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु और एक हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा और एक हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा तो ये तीन जो हैं ये तीन फुकाहा सहाबा अबादिला के जरिए ये मुराद होते हैं भाई जब फुकाहा जिक्र फरमाए अबादिला सलासा भाई। तो कहते हैं वहुअल मासूर अन उस्मान व अली इन वल अबादिलत सलासती और यही मनकूल है हजरत उस्मान से और हजरत अली से और अबादिला सलासा से व जैद इब्ने साबितिन और इसी तरह हजरत जैद इब्ने साबित से, इन सब से यही मनकूल है रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन व कफा बिहिम कुदवतन, और ये लोग काफी हैं कुदवतन बैतबार पेशवा होने के। कुदवा किसे कहते हैं? पेशवा, यानी जिससे रहनुमाई ली जाए। ये सहाबा पेशवा होने यानी रहनुमा होने के एतबार से काफी है कि हम इनके रास्ते पर चलें भाई। व कफा बिहिम, कफा फेल है और जैसे कफा बिल्लाही, इसकी क्या तरकीब है? कफा फेल है, बाजारा जायदा है और लफ्ज अल्लाह मजरूर है लफ्जन, लेकिन मरफू है मानन, ये फाइल है किसका? कफा के लिए। तो यहां भी इसी तरह बिहिम, ये होम जमीर क्या है? मजरूर है बा की वजह से, लेकिन ये बा जारा जायदा है और ये फाइल है कफा के लिए भाई। और ये भी याद रखना, ये जो हरूफ जारा जायदा होते हैं ये किसी से मुतअल्लिक नहीं होते भाई, क्योंकि ये अपने माना का फायदा ही नहीं दे रहे। ये जब किसी से जुड़ रहे हैं तो वहां ये दरअसल अपने माना का फायदा दे रहे होते हैं। जब ये अपने माना का फायदा ही नहीं दे रहे तो ये किसी से मुतअल्लिक भी नहीं होंगे भाई। हां, इनकी वजह से कलाम में ताकीद आ जाती है, कलाम में हुसन आ जाता है। तो कहते हैं वकफा बिहिम खुदवतन, और ये सहाबा जो हमने जिक्र कर दिए ये काफी हैं बैतबार रहनुमा होने के। वली अन्नहु काना तलाकन फिल जाहिलियती फहकम शरउ बितअजीलिही इलन क़िज़ा इल्मुद्दती, और नीज इसलिए क्योंकि ये जो ईला था ये तलाक शुमार की जाती थी जाहिलियत में। ईला जो है जमाने जाहिलियत में, यानी इस्लाम से पहले के जमाने के अंदर ये ईला को फौरी तलाक समझा जाता था। क्या समझा जाता था? फौरी तलाक समझा जाता था। लेकिन शरीयत ने इसके तलाक होने के हुक्म को तो नहीं बदला, अलबत्ता इसके अंदर मुद्दत मुकर्रर फरमा दी कि अब तलाक होगी, लेकिन कब होगी? 4 माह के बाद भाई। तो कहते हैं वली अन्नहु काना तलाकन फिल जाहिलियती, और इसलिए क्योंकि ये ईला तलाक था फिल जाहिलियती जमाने जाहिलियत में। फहकम शरउ बितअजीलिही, तो शरीयत ने हुक्म लगा दिया, शरीयत ने फैसला कर दिया बितअजीलिही इसको मुअख्खर करने का, इलन क़िज़ा इल्मुद्दती इस मुद्दत के गुजरने तक इसको मुअख्खर कर दिया शरीयत ने। फ़इन काना हलफ़ अला अरबाति अशहुरिन फ़क़द सक़तति अल्यमीनु लिअन्नहा कानत मुअक्क़ततन बिह। भाई सूरत मसला ये, खावन ने कसम उठाई है बीवी से, कहा है वल्लाह मैं 4 महीने तक तुमसे सोहबत नहीं करूंगा। तो फिर जब 4 महीने गुजर जाएंगे तो यमीन खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो कसम खाई ही कितनी मुद्दत के लिए थी? 4 माह के लिए। लेकिन अगर खावन ने मुद्दत जिक्र न की या हमेशा के लफ्ज का जिक्र किया तो ये यमीन मुअब्बद शुमार होगी। ये क्या होगी? यमीन मुअब्बद शुमार होगी और ये बाकी रहेगी भाई। देखिए भाई साहिबे हिदायत बयान फरमा रहे हैं, कहते हैं फइन काना हलफा अला अरबाती अशहुरिन, अगर इस खावंद ने 4 माह की कसम उठाई थी, फकद सकतत अल्यमीन, तो यमीन साकित हो गई, ली अन्नहा कानत मुअक्कततन बिही, इसलिए क्योंकि ये कसम मुकय्यद थी इस वक्त के साथ, यानी 4 माह के साथ मुकय्यद थी, वो वक्त गुजर गया तो यमीन खत्म। व इनकान हलफा अलल अबदी, और अगर खावन ने हमेशा पर कसम उठाई है, फल यमीन बाकियतुन, तो यमीन अभी भी बाकी है। 4 माह बेशक गुजर गए, तलाक भी हो गई, लेकिन कसम अभी भी बाकी है। औरत बाइना हो गई, जुदा हो गई, बाद में खावन फिर इसी औरत से निकाह कर लेता है, तो फिर याद रखो उसने हमेशा की कसम उठाई थी कि वल्ला मैं तुमसे कभी भी सोहबत नहीं करूंगा, तो कसम भी मौजूद है और ईला भी मौजूद है जी। तो लिहाजा 4 माह बाद तलाके बाइन हो गई, उसके बाद फिर खावन ने दोबारा निकाह किया इस औरत से, तो वो कसम भी मौजूद और ईला भी मौजूद है। तो दोबारा अगर 4 माह गुजर गए निकाह के बाद और खावन ने सोहबत न की, तो फिर दूसरी तलाक भी पड़ जाएगी, और अभी भी ईला भी मौजूद है और कसम भी मौजूद है। फिर खावन ने फिर तीसरा निकाह कर लिया इसके साथ, दो तलाकें हो चुकी हैं और फिर उसके बाद चार माह मजीद गुजर गए खावन ने सोहबत न की, तो कसम भी मौजूद है और ईला भी मौजूद है, तो चार माह के बाद यह औरत जो है फिर इसको तीसरी भी तलाक हो जाएगी भाई। अब ईला खत्म हुआ, ईला क्या हुआ खत्म, क्योंकि याद रखना, याद रखना जब तलाक को मुअल्लक किया जाता है तो उसका ताल्लुक उसी मिल्कियत से होता है, जब तलाक को मुअल्लक किया जाता है तो उसका ताल्लुक उसी मिल्कियत से होता है, नई मिल्कियत के साथ नहीं होता। लिहाजा एक ईला से एक तलाक हो गई, लेकिन खावंद अभी भी निकाह कर सकता है या नहीं कर सकता, मालूम मिल्कियत अभी पूरी खत्म नहीं, ये निकाह का मालिक है, लिहाजा अभी भी ईला मौजूद है। फिर उसके बाद खावंद ने फिर दूसरी तलाक भी हो गई, अभी भी खावंद इसके साथ निकाह कर सकता है, लिहाजा मालूम हुआ अभी भी मिल्कियत पूरी तरह खत्म नहीं हुई भाई। लिहाजा जब तीसरी तलाक हो जाएगी अब ईला खत्म हो गया, क्योंकि मिल्कियत ही खत्म हो गई। एक खावंद ज्यादा से ज्यादा कितनी तलाकों का मालिक होता है, तीन का, वो तीनों गुजर गए तो ईला खत्म हुआ, लेकिन कसम अभी भी नहीं खत्म, कसम अभी भी नहीं खत्म। लिहाजा इस औरत ने फिर किसी और से निकाह किया और फिर यह पहले खावंद के पास आ गई, तो अब बेशक चार माह तक सोहबत ना करे, ईला नहीं है, लिहाजा चार माह बाद भी तलाक वाकई नहीं होगी, लेकिन कसम मौजूद है जब भी इस औरत से खावंद सोहबत करेगा तो यह हानिस हो जाएगा, इसको फिर कफारा देना पड़ेगा, क्योंकि मुअब्बद कसम इसने खाई थी। मसला समझ में आ गया? तो कहते हैं वह इनकान हलफा अलल अबदी, और अगर खावन ने हमेशा पर कसम उठाई है, फल यमीन बाकियतुन, तो कसम बाकी है, ले अन्नहा मुतलकतुन, क्योंकि ये यमीन जो थी ये तो वक्त से मुतलक थी, इसमें वक्त की कोई कैद नहीं थी, वलम यूजदिल हिंसु, और हानिस होना भी नहीं पाया गया, अभी तक वो कसम वाला फेल भी नहीं पाया गया, इसने सोहबत नहीं की है, तो कहते हैं वलम यू जदिल हिंसु, और हानिस होना भी नहीं पाया गया, लितर तफिया भी, कि उसकी वजह से ये कसम उठ जाए और खत्म हो जाए, इल्ला अन्नहु ला यतकर्ररु तलाक कबल तज़व्वुजी, मगर यह कि तलाक मुकर्रर नहीं होगी निकाह करने से पहले। भाई एक दफा जब तलाक हो गई अब तो औरत बाइना हो गई, भाई औरत बाइना हो गई, उसके बाद मजीद चार माह गुजरते तो दूसरी तलाक ने भी वाके होना था, लेकिन अब तो वो औरत बाइना हो गई, निकाह ही खत्म हो गया भाई, अब तो उसके साथ खावन के लिए सोहबत जायज ही नहीं है भाई, तलाके बाइन आ चुकी है। तो कहते हैं इल्ला अन्नहु ला यतकर्ररु तलाक कबल तज़व्वुजी, मगर यह कि तलाक मुकर्रर नहीं होगी कबल तज़व्वुजी, इसके साथ निकाह करने से पहले, लिअन्नहु लम यूजद मनउल हक बादल बैनूनती, इसलिए क्योंकि जुदाई के बाद इसके हक को रोकना नहीं पाया गया, जब जुदाई आ गई अब तो खावन के लिए सोहबत जायज ही नहीं है, अब बीवी का हक रोकना नहीं पाया गया, बीवी का क्या हक रोका था खावन ने, सोहबत नहीं करता था, और अब तो सोहबत जायज ही नहीं है, तो अब हक रोकना नहीं पाया गया, तो बैनून जुदाई के बाद हक रोकना नहीं पाया जा रहा, लिहाजा अब दोबारा तलाक वाके नहीं होगी। ये माना है लिअन्नहु लम यूजद मनउल हक बादल बैनूनती, इसलिए क्योंकि जुदाई के बाद हक का रोकना नहीं पाया गया, फइन आदा फतज़व्वजहा, अगर ये खावंद फिर लौटा और फतज़व्वजहा और इसने फिर इसी औरत से दोबारा निकाह कर लिया, आदल ईलाउ, तो ईला फिर लौट आएगा, फइन वतिअहा, अगर इस खावंद ने इसे वती कर ली सोहबत कर ली तो अच्छी बात है, हानिस हो जाएगा और कफारा देगा, व इल्ला, और अगर उसने ऐसा न किया, वकात भी मुजी ये अरबाती अशहूरिन ततलीकतुन उखरा, तो वाके हो जाएगी चार माह के गुजरने से ततलीकतुन उखरा, एक और तलाक भाई, एक और तलाक वाके हो जाएगी, लिअन्न अल्यमीन बाकियतुन, इसलिए क्योंकि कसम अभी भी बाकी है, लितलाकीहा, उसके मुतलक होने की वजह से, क्योंकि उसमें वक्त की कोई कैद नहीं थी, वो तो हमेशा की कसम थी, वह बि तज़व्वुजी सबता हक़ुहा, और निकाह करने की वजह से इस औरत का हक साबित हो गया था, दोबारा वती के अंदर हक साबित हो गया था, फयतहक्ककु ज़ुल्म, तो जुल्म पाया जाएगा, यानी दोबारा निकाह किया है और फिर सोहबत नहीं कर रहा तो फिर जुल्म पाया जाएगा, वह युतबर इब्तिदा उहाद अल ईला इमिन वक्त तज़व्वुजी, और एतबार किया जाएगा इस ईला की इब्तिदा का मिन वक्त तज़व्वुजी, निकाह के वक्त से, निकाह के दोबारा खावन ने निकाह किया तो निकाह करते ही ये ईला का वक्त शुरू हो जाएगा, और 4 माह तक खावन ने सोहबत न की तो तलाक बाइन हो जाएगी। फिन तजव्वजहा सालिसन, और अगर खावन ने इसी बीवी से तीसरी मरतबा फिर निकाह कर लिया, आदल ईला तो ईला लौट आएगा, ववकअत बिमुजी ये 4 अशहुरिन उखरा, और तलाक वाके हो जाएगी और 4 महीने गुजरने से, इल्लम यकरबहा अगर खावन ने इसके साथ सोहबत न की, लिमा बैयन्ना उस वजह से जो हमने जिक्र कर दी कि जब निकाह किया है तो अब फिर औरत का हक आ गया वती के अंदर और खावंद इसे वती नहीं कर रहा तो ये जुल्म पाया जा रहा है और 4 महीने तक ये जुल्म पाया गया तो औरत जुदा हो जाएगी। आगे देखिए, फइन तज़व्वजहा बादा ज़ौजिन आखरा, अगर इस खावंद ने इस बीवी से निकाह किया है बादा ज़ौजिन आखरा किसी दूसरे खावंद के बाद, तो लम यक़ा बिज़ालिकल ईला इतलाकुन तो अब इस ईला की वजह से तलाक वाके नहीं होगी। क्यों नहीं वाके होगी? क्योंकि मिलके जदीद आ गई, और मैंने बताया था तलाक को जब भी मुअल्लक करें उसका ताल्लुक उसी मिल्कियत से होता है, नई मिल्कियत से उसका ताल्लुक नहीं होगा। हां अलबत्ता वो कसम बाकी है तो ईला तो नहीं लेकिन कसम बाकी है, जब सोहबत करेगा तो हानिस होगा और इसको कफारा देना पड़ेगा। तो कहते हैं फइन तज़व्वजहा बादा ज़ौजिन आखरा, अगर खावन ने इसी औरत से निकाह किया है बादा ज़ौजिन आखरा दूसरे खावन के बाद, लम यक़ा बिज़ालिकल ईला इतलाकुन तो अब इस ईला से तलाक वाक़े नहीं होगी, लितक़य्युदिही बितलाक़ि हादल मिल्की इसलिए क्योंकि वो ईला मुक़य्यद था, बितलाक़ि हादल मिल्की इसी मिल्कियत की तलाक के साथ, वही जो मिल्कियत मौजूद थी तालीक के वक्त उसी के तलाक के साथ मुकय्यद था कि वो तलाक हो जाएगी। वही फरउ मसअलति तंजीज़िल खिलाफियति, और ये इख्तिलाफी मसला तंजीज ही की फरा है जी। वो जो पीछे मसला जिक्र हुआ था तंजीज का क्या माना है? पूरा कर देना, यानी उसी वक्त तलाक दे देना। खावन बीवी से कहता है अंति तालिकुन, बस उसी वक्त तलाक हो गई, यह है तंजीज। ये दरअसल तालीक के मुकाबले में है, तालीक का माना है मुअल्लक करना। खावन बीवी से कहता है अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है, तो देखो ये तालीक है, और अगर उसी वक्त तलाक दे दे तो ये क्या है? तंजीज है। तो कहते हैं ये वही तंजीज वाला इख्तिलाफी मसला है, पीछे मसला जिक्र हुआ था, खावन ने बीवी से कहा अगर तू उस घर में गई तो तुझे 3 तलाकें हैं, 3 तलाकों को मुअल्लक कर दिया खावन ने, और अभी औरत उस घर में नहीं गई थी, उसे पहले खावन ने तंजीज कर दी, 3 तलाकें दे दी भाई कि तुझे 3 तलाकें हैं, तो हुरमत मुगल्लजा आ गई और फिर ये औरत गई, इसने किसी और खावन से निकाह किया और बाद में उसका इंतकाल हुआ या उसने तलाक दी, ये फिर पहले खावन के पास आई, तो हमारे नजदीक ये मिलके जदीद है, वो तालीक उसी मिल्कियत के साथ थी, लिहाजा अब औरत उस घर में जाएगी तो तलाक वाकई नहीं होगी। जबकि इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, अब भी 3 तलाकें वाके हो जाएंगी, क्योंकि वहां पर कोई कैद मौजूद नहीं थी कि इसी निकाह वाली 3 तलाकें मुराद हैं, इसी मिल्कियत वाली 3 तलाकें मुराद हैं, कोई ऐसी कैद वहां मौजूद नहीं थी भाई, लिहाजा अब नई मिल्कियत के बावजूद औरत उस घर में जाएगी तो 3 तलाकें वाके हो जाएंगी इमाम जुफर रहमतुल्लाह के नजदीक, जबकि हमारे नजदीक वाके नहीं होंगी। तो कहते हैं वही अफर उमस अलती तंजीज इल खिलाफी थी, ये उसी इख्तिलाफी मसला तंजीज की फरा है, वकद मर्रम इन कबल और तहकीक ये कबल में गुजर चुका है, वल यमीन बाकियतुन और कसम बाकी है, खावन ने ईला किया था और कसम मुअब्बद खाई थी और फिर ये औरत दूसरे खावन के बाद फिर अब पहले खावन के पास आ रही है, तो ईला तो खत्म हो गया क्योंकि मिलके जदीद आ गई है लेकिन कसम खत्म नहीं है, कसम अभी भी मौजूद है, तो वो जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं वल यमीनु बाकियतुन और कसम बाकी है, लि इतलाकिहा व अदमिल हिंसी, लि इतलाकिहा बवजह उसके मुतलक होने के, यानी उसमें कोई वक्त की कैद नहीं थी, वो तो हमेशा की कसम थी, व अदमिल हिंसी और हानिस न होने की वजह से, क्योंकि अभी तक हानिस होना भी नहीं पाया गया, हानिस हो जाएगा तो कसम खुल जाएगी, तो कहते हैं वल यमीन बाकियतुन, और कसम बाकी है ली इतलाकिहा व अदमिल हिंसी, उस कसम के मुतलक होने की वजह से और हानिस न होने की वजह से, फ इन वती आहा कफ़रा यमीनी ही, और अगर इस शख्स ने इस बीवी से सोहबत कर ली कफ़रा यमीनी ही, तो फिर यह कफारा देगा अपनी कसम से लिवजूद इल हिंसी, हानिस होना पाए जाने की वजह से। फइन हलफ अला अकल मिन अरबाती अशहुरीन, अगर खावन ने कसम उठाई है चार माह से कम पर, फइन हलफ अला अकल मिन अरबाती अशहुरीन, अगर खावन ने चार माह से कम पर कसम उठाई है, लम यकुन मूलियन, तो ये ईला करने वाला नहीं। मसलन खावन कहता है मैं एक महीने तक तुम्हारे साथ सोहबत नहीं करूंगा, या दो महीने तक, या तीन महीने तक, या एक दिन कम चार महीने तक जी। जब तक चार महीने पूरे नहीं होंगे ईला नहीं, चाहे एक दिन भी कम क्यों ना हो। तो कहते हैं अगर चार माह से कम की कसम उठाई खावंद ने तो ईला करने वाला नहीं है। लिकौल इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ला ईला अफीमा दूना अरबाति अशहुरीन, बवजह हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के कौल के उन्होंने फरमाया ला ईला अफीमा दूना अरबाति अशहुरीन, चार माह से कम में ईला नहीं है, चार माह से कम में ईला नहीं है। यह हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा का कौल है, लेकिन यह हदीसे मरफू के दर्जे में है जी। यह हदीसे मरफू के दर्जे में है, क्योंकि अकल से तो यह पता नहीं चल सकता कि चार माह से कम ईला नहीं हो सकता, तो मालूम हो उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना होगा। आगे देखिए, कहते हैं वली अन लिमतिना अन क़ुर्बानिहा फी अक्सरिल मुद्दती बिला मानिइन। भाई याद रखो ईला के अंदर खावंद बीवी की सोहबत से रुकता है चार माह तक, और नीज वहां कोई मानिअ भी होता है, मसलन कसम खाई हुई है वल्लाह मैं तुमसे सोहबत नहीं करूंगा, तो देखो सोहबत से रुका हुआ है और एक मानिअ भी मौजूद है सोहबत से, अगर मानिअ ना हो फिर सोहबत बेशक चार महीने नहीं साल तक भी ना करे तलाक नहीं होगी, जुल्म है अपनी जगह पर उसकी सजा मिलेगी, लेकिन बहरहाल तलाक नहीं होगी भाई, क्योंकि ईला किसे कहते हैं, मुतलकन सोहबत से रुकने को ईला नहीं कहते, बल्कि वहां मान्य भी कोई होना चाहिए, यानी खावन ने कसम खाई है, या मसलन तालीक की है, शर्त जजा जिक्र किए हैं, मैंने अगर तेरे साथ सोहबत की तो फिर मैं इतने रोजे रखूंगा, या मैंने अगर तेरे साथ सोहबत की तो मैं इतना सदका करूंगा, या मैंने अगर तेरे साथ सोहबत की तो मेरा गुलाम आजाद है। तो देखो यहां तालीक है, और तालीक भी क्या है, इसको भी फिका में यमीन कहते हैं, और यह भी मान्य बनती है भाई, जजा के खौफ से इंसान वो काम नहीं करता भाई। तो लिहाजा मालूम हुआ ईला के अंदर वैसे रुकना नहीं होता, बल्कि वहां मान्य भी होता है। बात समझ में आ रही है भाई, ईला में मानिअ का होना जरूरी है भाई, जैसे कसम खाई है तो कफारे का खौफ मानिअ है, क्योंकि अगर सोहबत करेगा तो कफारा लाजिम आ जाएगा, या इसी तरह तालीक की है कि अगर मैंने तुमसे सोहबत की तो मुझ पर हज लाजिम है या रोजे लाजिम है, तो देखो यहां ये जजा का खौफ जो है मानिअ बनेगा, खावन को यह खौफ है अगर मैं सोहबत करूंगा तो मुझ पर तो हज लाजिम हो जाएगा या मुझ पर रोजे लाजिम हो जाएंगे, तो ईला के अंदर मान्या का होना जरूरी है सारी मुद्दत ईला के अंदर, यानी वो जो चार महीने हैं उनमें मान्या का होना जरूरी है भाई। साहिब हिदाया दलील जिक्र फरमा रहे हैं कि चार माह से अगर कम किसी ने कसम खाई है वो ईला नहीं, वो ईला नहीं। एक तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा का कौल जिक्र कर दिया कि वो भी फरमाते हैं कि ईला चार माह से कम नहीं होता भाई, और नीस कहते हैं इसलिए क्योंकि ये शख्स मसलन इसने कितने की कसम खाई है, एक माह की, कितने की, तो चार माह में से एक माह तो ये कसम की वजह से रुका है, और बाकी तीन महीने तो वो बाकी तीन महीने भी अगर वो सोहबत नहीं करता तो वहां सोहबत नहीं पाई गई, लेकिन मान्या वहां कोई नहीं है जी। तो यहां देखो चार महीने में से सिर्फ एक महीने में मान्या है, अक्सर मुद्दत में मान्या नहीं है, लिहाजा ये ईला नहीं होगा जी। यह माना है वलिया नल इम्तिना अन किरबानीहा, और इसलिए क्योंकि इस बीवी की सोहबत से रुकना। इम्तिना का क्या माना? रुकना और बाज आना। वली अन नल इम्तिना अन किरबानीहा, इसलिए क्योंकि इस बीवी की सोहबत से रुकना। फी अक्सर मुद्दती, इस अक्सर मुद्दत के अंदर जो है बिला मानिन, बगैर किसी मानिया के है। इसने तो कितने की कसम खाई है? एक माह की। तो चार महीने में से अक्सर के अंदर जो रुकना पाया गया वो बगैर किसी माने के पाया गया भाई। तो कहते हैं वह भी मिसलिही ला यसबुत हुक्म तलाकिफी ही, वह भी मिसलिही, और इस जैसे रुकने से, इस जैसे इम्तेना से ला यसबुत हुक्म तलाकिफी ही, इसमें तलाक का हुक्म साबित नहीं होगा। इस तरह का रुक ना पाया जाए जिसके अंदर सारी मुद्दत में मान्या मौजूद ना हो तो उससे तलाक साबित नहीं होती। तलाक तब साबित होगी जब सारी मुद्दत के अंदर मान्या पाया जाए भाई। यहां शारहीन ने एतराज किया है। एतराज ये कि खावन जो है बीवी की सोहबत से रुका है फी अक्सर मुद्दती, अक्सर मुद्दत में बिला मान्या, बगैर किसी मान्या के। शारहीन फरमाते हैं कि भाई अक्सर की बात नहीं है, पूरे चार महीने मान्या की वजह से रुका हो खावन फिर ईला होता है। मसलन मैंने बताया खावन चार महीने से एक दिन कम की कसम खा लेता है कि मैं एक दिन कम चार माह तक मैं तेरे साथ सोहबत नहीं करूंगा। तो अब देखो, अब मसलन ये अब चार माह बाद सोहबत करता है बीवी के साथ, तो ये एक दिन कम चार महीने, ये तो इसने कसम खाई है, और साथ एक दिन को भी मिला लेता है, उसमें भी वो सोहबत फिर नहीं करता, तो कितने महीने हो गए? चार। तो चार में से अक्सर के अंदर तो मान्या मौजूद है, अक्सर के अंदर कसम मौजूद है, मान्या मौजूद है, लेकिन फिर भी ईला नहीं है। तो मालूम हो अक्सर के अंदर मान्या होना नहीं जरूरी, सारे के अंदर मान्या होना जरूरी है। तो साहिब हिदायत तो फरमा रहे हैं फिर अक्सर इल मुद्दती बिला मानी, क्योंकि अक्सर के अंदर मान्या नहीं पाया गया। तो जवाब देते हैं फिर शारहीन कि भाई दरअसल साहिब हिदाया ने यह जो मसला जिक्र फरमाया है यह मबसूत से लिया, कहां से? और मबसूत के अंदर वहां एक माह की कसम का जिक्र है। जब एक माह की कसम का जिक्र है तो अक्सर मुद्दत के अंदर देखो बिला मान्या के रुकना पाया गया, तो साहिब हिदाया उसी को जिक्र फरमा रहे हैं कि वलिया नल इम्तिना अन किरबानीहा, इसलिए क्योंकि खावंद का अपनी इस बीवी की सोहबत से रुकना फी अक्सर मुद्दती बिला मान्याइन, वो अक्सर मुद्दत के अंदर यानी तीन माह के अंदर जो है बगैर किसी मान्या के है, लिहाजा ईला नहीं होगा, तलाक वाकई नहीं होगी भाई। तो साहिब हिदाया ने जो अक्सर मुद्दत को जिक्र फरमाया इसकी बुनियाद किस पर है? मबसूत यानी असल के अंदर जो इमाम मोहम्मद रहमतुल्ला ने मसला जिक्र फरमाया था, यानी एक माह की कसम जो है उसको जिक्र फरमाया था, उस पर यह मसला मबनी है। तो बहरहाल शारहीन फरमाते हैं कि यहां अगर साहिब हिदाया अक्सर के बजाय बाज कह देते तो बात बिल्कुल ठीक हो जाती, फिर चाहे मबसूत वाला मसला लें या इसके अलावा कोई और भी सूरत ले लें तो बात सही हो जाती। अक्सर की वजह से यहां शुबा पड़ता है, एतराज होता है। क्या लफ्ज होना चाहिए था? फी बाजिल मुद्दती, भाई देखो ईला कब होगा? जब पूरे चार महीने सोहबत से खावंद रुके और कोई मान्या भी मौजूद हो पूरे चार महीने। अगर चार महीने के अंदर बाज के अंदर भी मान्या ना पाया गया, मसलन एक दिन के अंदर मान्या नहीं था, खावंद ने एक दिन कम चार महीने की कसम खाई है, तो देखो एक दिन के अंदर मान्या नहीं है, तो बाज मुद्दत के अंदर भी अगर मान्या नहीं होगा तो ये ईला नहीं है भाई। बात समझ में आ गई? तो शारहीन क्या फरमाते हैं, यहां साहिब हिदाया बाज मुद्दत फरमा देते तो मबसूत वाला मसला भी इसके अंदर आ जाता और बाकी सूरतें भी इसके अंदर आ जाती भाई। मसला समझ में आ गया? तो कहते हैं वह भी मिसली ही, और इस किस्म के इम्तिना से यानी इस किस्म के रुकने से ला यसबुत हुक्म तलाकी फी ही, इसमें तलाक का हुक्म साबित नहीं होगा। आगे देखिए वलव काला वल्लाही ला अकरबु की शहरैनी व शहरैनी बाद हाज़ैनी शहरैनी फहुवा मूलिन। सूरत मसला ये, खावन ने बीवी से कहा, कसम उठाई कि वल्लाह मैं तुझसे सोहबत नहीं करूंगा दो महीने और दो महीने तक, वल्लाह मैं तुझसे सोहबत नहीं करूंगा दो महीने और दो महीने, या यूं कहो कि वल्लाह मैं तुझसे सोहबत नहीं करूंगा दो महीने, और इन दो महीनों के बाद अगले दो महीने, जिस अंदाज में भी जिक्र कर दे, या तो सिर्फ यूं कह दे दो महीने और दो महीने, तो इस सूरत में भी ये ईला होगा, क्योंकि दो महीने और दो महीने कितने हो गए, चार महीने। ये यूं कह दे ये दो महीने और इनसे अगले दो महीने, तो भी चार महीने हो गए। जैसे चार माह का लफ्ज जिक्र करने से ईला होता है, तो अगर हर्फ अतफ के साथ भी मुद्दत अलग अलग मुद्दत जिक्र करे लेकिन सारों का मजमुआ कितना बने, चार माह बने, तो ये ईला ही होगा। भाई कहते हैं वलौ काला, और अगर खावन ने कहा वल्लाहि ला अक्रबु की, कि वल्लाह मैं तुझसे सोहबत नहीं करूंगा शहरैनी दो महीने तक, व शहरैनी बाद हाजैनी शहरैनी, और इन दो महीनों के बाद और दो महीने, फहुआ मूलिन, तो ये खावन ईला करने वाला है, लियान्नहु जमा बैनहुमा बिहर्फिल जमई, इसलिए क्योंकि खावन ने इन महीनों को जमा किया है हर्फ जमा के साथ, यानी वाओ के साथ, फसारा का जमई ही बिलफ्जिल जमई, तो ये ऐसे ही है जैसे कि खावन ने इनको जमा किया हो जमा के लफ्ज के साथ, यानी यूं समझेंगे खावन ने चार महीने का लफ्ज ही जिक्र किया है। वलौ मकसयौ मन सुम्मा काला, जी फुकहा पर अल्लाह की करोड़ा रहमतें हों, इंसान हैरान होता है कितनी कितनी मेहनतें की होंगी इन्होंने एक एक मसले को कुरान और हदीस से अखज किया, और फिर बेहतरीन इबारत के साथ उनको तरतीब दिया, और हर मरहर मसले को अपने अपने मकाम पे जिक्र किया। अब जब आपको एक मसला तलाश करना होता है आसानी से वो बाब या वो फसल निकालते हैं और मसला तलाश कर लेते हैं। सूरत मसला ये कहते हैं एक शख्स ने कसम उठाई कि अपनी बीवी से कहा वल्लाह मैं तुमसे दो महीने तक सोहबत नहीं करूंगा, फिर एक दिन गुजर गया, एक दिन गुजरने के बाद दोबारा कसम उठाई कि वल्लाह उन दो महीनों के बाद दो महीने और भी मैं तुम्हारे साथ सोहबत नहीं करूंगा। जी अब आप मुझे बताइए ये ईला है या ईला नहीं? बजाहिर लगता है ईला हो गया, क्योंकि गुज़श्ता कल भी कसम खाई थी दो महीने की, और आज फिर कसम खा रहा है कि वो दो महीनों के बाद मजीद दो महीने भी मैं तुम्हारे साथ सोहबत नहीं करूंगा, तो चार महीने हो गए, तो बजाहिर शुबा होता है कि शायद अब ईला हो गया। फुकहा फरमाते हैं नहीं, ईला नहीं हुआ। भाई क्यों नहीं ईला हुआ? वजह यह कि ईला इसे कहते हैं कि चार माह की कसम हो, कितने की हो, चार माह की, और इस शख्स ने जब पहले दिन दो माह की कसम उठा ली, अब एक दिन गुजर गया, आप मजीद दो महीने साथ मिला रहा है, तो चार महीने पूरे हो रहे हैं या चार महीने से एक दिन कम है? अब कम है, एक दिन गुजर चुका है, तो इकट्ठे चार महीने होने चाहिए थे, तो लिहाजा अब एक दिन कम हो चुका है चार महीने से, लिहाजा ये ईला नहीं है। भाई कहते हैं वलौ मकसयौमन, अगर ये शख्स एक दिन ठहरा रहा, सुम्मा काला फिर कहता है वल्लाहि ला अक्रबु की शहरैनी बाद शहरैनिल अव्वलैनी, कि वल्लाह मैं तुझसे सोहबत नहीं करूंगा उन पहले दो महीनों के बाद मजीद दो महीने, लम यकुन मूलियन, तो ये शख्स ईला करने वाला नहीं है, लिअन्नसानिया ईजाबुन मुब्तदाउन, इसलिए क्योंकि दूसरी कसम इसने खाई है ईजाबुन मुब्तदाउन, ये नया ईजाब है, ये नया ईजाब है, नई कसम है, पहली कसम के साथ मिलाकर तो इसने नहीं कहा भाई, तो लिहाजा चार महीने इकट्ठे पूरे होने चाहिए, लेकिन यहां चार महीने पूरे नहीं हो रहे, एक दिन कम हो चुका है। तो कहते हैं लिअन्नसानिया ईजाब मुब्तदा उन, इसलिए क्योंकि ये जो दूसरा कौल है खावंद का, ये एक नया ईजाब है, नई चीज वाजिब कर रहा है अपने ऊपर, वकद सारा ममनू अन बादल ऊला शहरैनी, और तहकीक खावंद ममनू हो गया था, यानी रोका हुआ हो गया था सोहबत से बाद अल ऊला, पहली यमीन के बाद शहरैनी दो माह के लिए, खावन ममनू हो गया था पहली यमीन की वजह से दो माह के लिए। फिर तर्जमा देख लीजिए, वक़द सारा ममनू अन बाद अल ऊला शहरैनी, और खावन जो है पहली कसम के बाद ममनू हो गया था दो माह के लिए, व बाद असानियती अरबाता अशहुरिन इल्ला यौमन मकसफी, और दूसरी कसम के बाद खावन ममनू हो गया अरबाता अशहुरिन इल्ला यौमन मकसफी ही, चार माह, दूसरी कसम के बाद खावन चार माह ममनू हुआ है इल्ला यौमन, मगर एक दिन कम, वो दिन मकसफी ही जिसमें वो ठहरा रहा भाई। तो फलम ततकामल मुद्दतुल मनई, तो मना की मुद्दत कामिल नहीं हुई, चार महीने कामिल नहीं हुए भाई। हां अलबत्ता याद रखना ये दो कस्में हो गई हैं, ईला तो नहीं हुआ, लेकिन ये शख्स जब अपनी बीवी से सोहबत करेगा तो दो कफारे देने पड़ेंगे क्योंकि दो अलग अलग कस्में खाई हैं इसने। आगे देखिए वलौ قال والله لا اقربك سنة الا يوما لم يكن موليا। सूरत है मसला ये, खावन ने बीवी से कहा वल्लाह मैं तुझसे सोहबत नहीं करूंगा पूरा एक साल, इल्ला यौमन मगर एक दिन कम, एक दिन कम पूरा साल मैं तुम्हारे साथ सोहबत नहीं करूंगा। एक दिन का इस्तेसना कर लिया खावन ने। और ये इल्ला यौमन, ये यौम का लफ्ज नकेरा है, कोई यानी कोई मुतायन दिन नहीं कि फलां वाले दिन नहीं करूंगा, नहीं, ये कोई भी साल के अंदर कोई दिन भी हो सकता है। तो क्या ये ईला है, एक दिन का इस्तेसना किया है साल से? कहते हैं नहीं, ये ईला नहीं, ये ईला नहीं। ईला किसे कहते हैं? ईला के अंदर खावन जब भी सोहबत करेगा हानिस होना जरूरी है, हानिस होना जरूरी है। अगर हानिस नहीं हो रहा मालूम हो ये ईला ही नहीं है। तो इस शख्स ने भी एक दिन का इस्तेसना किया है और यौम का लफ्ज़ नकिरा जिक्र किया है, साल का कोई भी दिन इसे मुराद हो सकता है। लिहाजा मसलन साल शुरू हो गया लेकिन हर दिन के अंदर एहतमाल है खावन किसी एक दिन भी सोहबत कर सकता है। देखो पूरा साल ममनू है खावन लेकिन एक दिन का क्या है इस्तेसना। तो मसलन साल के पहले महीने से अगर आप देखें, पहले महीने से शुरू करें तो देखें ईला नहीं है। ईला किसे कहते हैं? बगैर कफारे के वती ही ना कर सके और एक दिन का इस्तेसना है तो किसी भी दिन खावन वती कर सकता है और उस पर कफारा भी नहीं आएगा क्योंकि उसने इस्तेसना किया हुआ है। तो जो जो वक्त गुजरता जा रहा है तो ये दिन अभी भी मौजूद है, ये किसी दिन भी सोहबत कर सकता है। हालांकि ईला में तो जब भी सोहबत करता है खावन क्या हो जाता है? हानिस हो जाता है। तो पूरे चार महीने तक मुसलसल मानिया के साथ रुकना नहीं पाया जा रहा, एक दिन का बीच में इस्तेसना आ जाता है, जब मर्जी खावन सोहबत कर सकता है और कफारा भी नहीं आएगा क्योंकि उसने इस्तेसना किया हुआ है। तो साल गुजरता जा रहा है, एक माह गुजर गया, दो तीन चार पांच छह सात महीने गुजर गए लेकिन हानिस नहीं क्योंकि जिस दिन भी ये सोहबत करेगा कफारा तो नहीं आएगा। और हमने तो क्या कहा, ईला तो तब है कि सोहबत करे तो कफारा आता हो उस पर। हां अगर खावन ने सात महीने बाद बीवी से सोहबत कर ली और अभी आगे पांच महीने बाकी हैं तो जिस दिन का इस्तेसना किया था वो गुजर गया, अब अगले पांच महीने के अंदर तो कसम मौजूद है जी। अब वहां जब भी सोहबत करेगा हानिस होगा, लिहाजा अब ईला आ गया जी। अब ईला आ गया, अब चार महीने गुजरेंगे तो बीवी जुदा हो जाएगी वरना इससे पहले ही सोहबत करना पड़ेगी और फिर वो खावंद हानिस हो जाएगा जी। सूरत समझ में आ गई। लेकिन अगर सारा साल ही सोहबत ना की खावंद ने तो भी ईला नहीं है क्योंकि वो एक दिन का इस्तेसना तो मौजूद है जी। तो कहते हैं वलौ काला, और अगर खावन ने कहा वल्लाह ला अक्रबू की सनतन इल्ला यौमन के वल्ला मैं तुझसे सोहबत नहीं करूंगा पूरा साल सिवाय एक दिन के, लम यकुन मूलियन तो खावन ईला करने वाला नहीं है, खिलाफ अल जुफर रहमहुल्ला बखिलाफ इमाम जुफर रहमहुल्ला के, वो हुआ या सरिफुल इस्तिस्ना इला आखिरिहा। इमाम जुफर रहमहुल्ला फरमाते हैं ये ईला है, एक दिन का इस्तेसना किया है लेकिन ये ईला है। वो दरअसल इस मुस्तस्ना को फेर देते हैं साल के आखिर तक, साल के आखिर पर ले जाते हैं कि साल के आखिर में से एक दिन कम करेंगे। तो बाकी तो मालूम है 12 महीने की कसम हो गई एक दिन कम की, तो लिहाजा ईलाप हो गया उनके नजदीक। वो इसको कियास करते हैं इजारे पर। याद रखो इजारे के अंदर अगर कोई शख्स किसी के साथ अकदे इजारा करता है, मसलन कोई मकान वगैरह उसे किराए पर लेता है और एक दिन कम साल की मुद्दत तय करते हैं, किराएदार क्या कहता है, ये मकान मैं आपसे किराए पर लेता हूं एक दिन कम पूरे साल के लिए जी। तो अब उसने एक दिन का इस्तेसना कर दिया और इस सूरत में बिल इत्तेफाक हमारे फुकहा फरमाते हैं कि ये दिन साल के आखिर का शुमार करेंगे, साल का आखिरी दिन इजारे से खारिज है, उससे पहले तक इजारे का आकद हो गया। तो इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते हैं जैसे इजारे के अंदर जब एक दिन का इस्तेसना किया जाता है तो उसको साल के आखिर में शुमार करते हैं, तो यहां पर भी जब इसने कसम खाई है और एक दिन का इस्तेसना किया है तो इसको साल के आखिर में शुमार करेंगे। जब साल के आखिर में शुमार किया, ये तो तकरीबन 12 महीने सारा मान्य आ गया, जब मान्य आ गया तो इला हो गया। तो कहते हैं खिलाफन लि जुफरा रहमहुल्ला, बखिलाफ इमाम जुफर रहमहुल्ला के, वह हुआ यसरिफुल इस्तिस्ना इला आखिरिहा, और वो फेरते हैं इस्तिस्ना को साल के आखिर की तरफ, एतबारम बिल इजारती इजारा पर कियास करते हुए, फतम्मत मुद्दतुल मनई, तो मना की मुद्दत पूरी हो गई। अब तो 12 महीने रुकना लाजिम आ रहा है, 4 महीने पर ही तलाक हो जाती है, तो ये तो मुद्दत से जायद हो गया। तो कहते हैं फतम मत मुद्दतुल मनई, तो मना की मुद्दत पूरी हो गई, वलना, और हमारी दलील यह है कि अनल मूलिया मल्ला युमकिनुहुल किरबानु अरबात अशहूरिन, के ईला करने वाला वो होता है मल्ला युमकिनुहुल किरबानु, के जिसके लिए सोहबत करना मुमकिन ही ना हो, अरबात अशहूरिन 4 महीने तक, इल्ला बिशयइन यलजमुहु, मगर एक ऐसी चीज के साथ जो इस पर लाजिम आ रही हो। ईला करने वाला किसे कहते हैं कि जिसके लिए 4 महीने तक सोहबत मुमकिन ही ना हो बगैर किसी चीज के जो उस पर लाजिम हो रही हो, यानी उस पर कफारा लाजिम होगा, या अगर उसने तालीक की है तो वो जजा इस पर लाजिम हो जाएगी। फिर तर्जमा देख लीजिए, वलाना, हमारी दलील यह है कि अनल मूलिया मल्ला युमकिनुहुल किरबानु अरबात अशहूरीन, के इला करने वाला वो है कि उसके लिए 4 माह तक सोहबत मुमकिन ही ना हो, इल्ला बिशय यलजमुहु, मगर एक ऐसी चीज के साथ जो इस पर लाजिम हो रही हो, वह युमकिनुहु हा होना, और खावंद के लिए यहां पर मुमकिन है, वो सोहबत कर सकता है, किसी भी दिन कर सकता है, लिअन्नल मुस्तस्ना यौम मुनक्करुन, इसलिए क्योंकि मुस्तस्ना जो है वो यौम मुनक्कर है, यानी नकेरा, यौम का लफ्ज जो नकेरा है, बिखिलाफ इल इजारती, और इमाम जुफर ने इसको किस पर कियास किया था, इजारे पर, तो उसका भी जवाब दे रहे हैं कि भाई इजारे के अंदर वो उस दिन को साल के आखिर में इसलिए शुमार करते हैं, इसलिए शुमार करते हैं कि वरना तो इजारे के अंदर जहालत लाजिम आएगी भाई, और याद रखो ब्या और इजारे वगैरह में थोड़ी सी भी जहालत आ जाए तो फिर अकद ही फासिद हो जाता है, क्योंकि फिर झगड़ा होगा, क्या होगा, झगड़ा होगा। तो वहां पर इजारे की तस्हीह के लिए उस दिन को साल के आखिर की तरफ फेर दिया गया था ताकि जहालत क्या हो जाए, खत्म हो जाए, वरना तो इजारा ही सही नहीं बन रहा था, लेकिन कसम तो जहालत के साथ भी सही हो जाती है भाई, लिहाजा ये जो इसने सोहबत न करने की कसम खाई है ये जहालत के बावजूद सही हो जाएगी भाई। कहते हैं बिखिलाफ इल इजारती, बखिलाफ इजारे के, लिअन्न सर्फ इलल आखिरी, इसलिए क्योंकि साल के आखिर की तरफ उस दिन को फेरना, लि तसहीहिहा, वो इस इजारे को दुरुस्त करने के लिए होता है, फइन्नहा ला तसिहु मा तनकीरी, इसलिए क्योंकि इजारा सही नहीं होता तनकीर के साथ, यानी जहालत के साथ इजारा सही नहीं होता, वला कजालिकल यमीनो, और कसम तो ऐसी नहीं है, वो तो जहालत के साथ भी सही हो जाती है, वलौ करीब हाफी यौमिन वलबाकी अरबातु अशहूरिन, सूरत मसला ये, खावन ने साल के बीच में किसी वक्त सोहबत कर ली तो वो जो एक दिन का इस्तेसना किया था वो गुजर गया, अब देखेंगे बाकी 4 महीने पूरे बचते हैं या नहीं उस साल में से, अगर पूरे 4 महीने बच रहे हैं या ज्यादा हैं तो फिर ईला हो गया, अब सोहबत नहीं करेगा 4 माह तक तो तलाके बाइन पड़ जाएगी बीवी को। कहते हैं वलव करीबा हाफी यौमिन, अगर खावन ने एक दिन बीवी से सोहबत कर ली, वल बाकी अरबातु अशहूरिन औ अक्सरु, और बाकी जो हैं वो 4 महीने हैं या ज्यादा हैं, सारा मूलियन, तो अब ये खावन ईला करने वाला हो गया, लिसुकूति लिस्तिस्नाई, क्योंकि इस्तिस्ना साकित हो गया, वलव काला वह हुआ बिल बसरति वल्लाहि ला अदखुलुल कूफत वमरअतुहु बिहा लम यकुन मूलियन, सूरत मसला ये, खावन बसरा के अंदर है यानी किसी और शहर में है और बीवी कूफा के अंदर है भाई, खावन सफर पर आया हुआ है और यहां खावन कसम खाता है कि वल्लाह मैं कूफा नहीं जाऊंगा, यानी वक्त जिक्र नहीं किया, और वक्त जिक्र ना किया जाए तो इसको मुअब्बद शुमार करते हैं, तो इसने कूफा के अंदर दाखिल न होने की कसम खा ली, तो क्या यह ईला करने वाला हो गया? कहते हैं नहीं, ये अभी भी ईला करने वाला नहीं है, ईलाव करने वाला तो वो है कि बीवी से मुद्दत के अंदर सोहबत करेगा तो उस पर कफारा जरूर आएगा, लेकिन यहां पर इस खावंद के लिए मुमकिन है बीवी से सोहबत करे और कफारा भी ना लाजिम आए। वो किस तरह? कि बीवी को उस शहर से बाहर बुलवा ले, तो सोहबत भी हो सकती है और कफारा भी लाजिम नहीं आ सकता। तो कहते हैं वलौ काला, और अगर खावंद ने कहा वह हुआ बिल बसरती, इस हाल में कि खावंद बसरा में है, वल्लाहि ला अदखुलुल कूफा, ताकि वल्लाह मैं कूफा में दाखिल नहीं होऊंगा, वमरातुहु बिहा, इस हाल में कि इसकी बीवी उस कूफा में है, लम यकुन मूलियन, तो यह शख्स ईला करने वाला नहीं है, लिअन्नहु युमकिनुहुल क़िरबानु मिन गैरि शैइन यल्ज़मुहु, इसलिए क्योंकि इस खावंद के लिए सोहबत करना मुमकिन है बगैर किसी चीज के इस पर लाजिम हुए, बगैर किसी चीज के इस पर लाजिम हुए, बिल इखराज मिनल कूफती, कूफा से निकाल कर, कूफा से बीवी को बाहर निकाल कर उससे सोहबत मुमकिन है। भाई आगे देखिए, قال ولو حلف بحج او بصوم او بصدقه او عتق او طلاق فهو مول। भाई मैंने आपको बतलाया कि ईला के अंदर सिर्फ कसम खाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि तालीक भी अगर कर देता है, तालीक भी कर देता है किसी एक चीज की जिसमें मशक्कत हो गई, तो इस सूरत में भी ये ईला है। भाई इस सूरत में भी ये ईला है, जैसे क्या कहता है कि अगर मैंने तेरे साथ सोहबत की तो मुझ पर बैतुल्ला का हज लाजिम है, या मैंने तेरे साथ सोहबत की तो मुझ पर रोजा लाजिम है, या मैंने तेरे साथ सोहबत की तो मुझ पर इतना सदका लाजिम है, या मैंने तेरे साथ सोहबत की तो मेरा गुलाम आजाद है, या मैंने तेरे साथ सोहबत की तो तुझे तलाक है, या तेरी सौकन को तलाक है, तो कोई भी तालीक कर देगा तो यह तालीक भी मान्या बनेगी सोहबत से, लिहाजा इसलिए यह भी क्या होगा? ईला होगा। तो तालीक को भी यमीन कहते हैं फिका के अंदर। काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं वलौ हलफा भी हज जिन, और अगर खावंद ने हज की कसम उठा ली यानी हज की तालीक कर दी, अभी सौ मीन या रोजे की, चाहे थोड़े रोजे हों चाहे ज्यादा, बारह रोजा रखना मशक्कत का काम है, और भी सदकतीन या सदके की कसम उठा ली, चाहे थोड़ा सदका हो चाहे ज्यादा, क्योंकि बहरहाल माल हाथ से जाएगा भाई, औ इतकिन या गुलाम के आजाद करने की, औ तलाकिन या तलाक की कसम उठा ली, फहुआ मूलिन तो वो ईला करने वाला है, लितहक्कुकिल मनअ बिल यमीनी, इसलिए क्योंकि यमीन के जरिए मना करना पाया गया, ये शख्स अब सोहबत से रुकेगा किसकी वजह से? इस जजा के खौफ से भाई। तो लितहक्कुकिल मनअ बिल यमीनी, इसलिए क्योंकि सोहबत से रुकना पाया गया है यमीन की वजह से, वह हुआ जिक्र शर्त वल जजाई, और वो शर्त और जजा को जिक्र करना है। यहां पर यमीन क्या है जी? वह हुआ जिक्र शर्त वल जजाई, और वह शर्त और जजा को जिक्र करना है, वहादिहिल अजजियतु मानियातुन, और ये वाली जजाएं मान्य हैं। ये वाली जजाएं क्या हैं? इंसान को रोकती हैं भाई, लिमा फीहा मिनल मशक्कती, इस वजह से कि इनके अंदर मशक्कत है, हज करना या रोजा रखना या सदका करना, इन सब चीजों में मशक्कत है। वसूरतुल हल्फ बिल इत्की अन युअल्लिक बिक़िरबानिहा इत्क अब्दिही। अब भाई ऊपर कई सूरतें जिक्र की, हज की कसम खा ली, या रोजे की, या सदके की, या इत्क यानी अपने गुलाम की आजादी की, और तलाकिन या तलाक की, लेकिन साहिब हिदाया इनमें से सिर्फ इत्क की सूरत जिक्र फरमा रहे हैं कि अपने गुलाम की आजादी की कसम खा ली, कि अगर मैंने तेरे साथ सोहबत की तो मेरा गुलाम आजाद है, तालीक कर दी शर्त और जजा के साथ, यह भी तो यमीन है, कसम है भाई। क्या कहा? कि अगर मैंने तेरे साथ सोहबत की तो मेरा गुलाम आजाद है। तो अब यह सूरत साहिब हिदायत जिक्र फरमा रहे हैं, बाकी हज रोजा वगैरह उसकी सूरत जिक्र नहीं फरमा रहे। वजह यह कि इसके अंदर इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह इख्तिलाफ करते हैं भाई, इसमें इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह इख्तिलाफ करते हैं, वो बतलाना मकसूद है, इसलिए इसको जिक्र कर रहे हैं। बाकियों की सूरतें वाजह थी भाई, उनके बयान की जरूरत नहीं भाई। तो कहते हैं वसूरतुल हल्फ बिल इत्की, और आजादी की कसम की सूरत यह है, अन युअल्लिक बिक़िरबानिहा इत्क अब्दिही, कि खावन मुअल्लक कर दे अपने गुलाम की आजादी को बीवी की सोहबत के साथ। وفيه خلاف ابي يوسف رحمه الله, اور اس میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا اختلاف ہے. فانه يقول, وہ فرماتے ہیں, يمكنه البيع, وہ فرماتے ہیں کہ نہیں, اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میں نے تیرے ساتھ صحبت کی تو میرا غلام آزاد ہے, وہ فرماتے ہیں یہ ایلا نہیں, یہ ایلا نہیں. بھئی کیوں نہیں ایلا؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہاں پر بھی ایسی صورت ممکن ہے کہ خاوند صحبت بھی کر لے اور اس پر کچھ لازم بھی نہ آئے. بھئی کیسے لازم نہیں آئے گا, وہ صحبت کرے گا تو غلام آزاد ہو جائے گا اس کا. کہتے ہیں بھئی وہ اس غلام کو بیچ دے اور پھر صحبت کر لے. اب دیکھو کوئی مانع نہیں ہے اب صحبت سے, حالانکہ ایلا کے اندر صحبت کے اندر مانع ہوتا ہے ہمیشہ. بھائی تو کہتے ہیں وفیہ خلاف ابی یوسف رحمہ اللہ, اور اس میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا اختلاف ہے. فانہ یقول, وہ فرماتے ہیں, یمکنہ البیع, کہ اس خاوند کے لیے ممکن ہے اس غلام کو بیچنا, ثم القربان, پھر صحبت کرنا, فلا یلزمہ شیئ, تو اس خاوند پر کوئی بھی چیز لازم نہیں ہوگی, یعنی کوئی کفارہ یا جزا وغیرہ اس پر نہیں آئے گی. بھائی وہما یقولانی, جبکہ طرفین رحمہم اللہ فرماتے ہیں, البیع موہوم, کہ بیع تو موہوم ہے, ایک وہمی چیز ہے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اپنے غلام کی آزادی کو معلق کیا ہے بیوی کے ساتھ صحبت پر, لیکن خاوند کے لیے ممکن ہے کہ وہ اپنے اس غلام کو بیچ دے. بھائی اس طرح وہ صحبت بھی بعد میں کر سکتا ہے اور اس پر کوئی چیز بھی لازم نہیں آئے گی. تو جواب دے رہے ہیں طرفین کہ بیع ایک وہمی چیز ہے, پتہ نہیں بیع ہوتی ہے یا نہیں. بیع صرف بائے پر تو بات پوری نہیں, خاوند تو اپنے غلام کو بیچنا چاہتا ہے, لیکن اگر اس کو اس دوران کوئی مشتری ہی نہ ملا تو بھی مدت گزرے گی تو طلاق ہو جائے گی. بھائی تو کہتے ہیں وہما یقولانی, تو طرفین رحمہم اللہ فرماتے ہیں, البیع موہوم, ان کے بیع جو ہے وہ تو ایک وہمی چیز ہے, ہو سکتا ہے پائی جائے اور ہو سکتا ہے نہ پائی جائے, مشتری ہی کوئی نہ ملے. فلا یمنع المانعیت فیہ, لہذا مانعیت اس کے اندر مانع نہیں ہوگی. توجہ سے سمجھ لو بھائی یہ جملہ, بھائی اس کا معنی اچھی طرح سمجھ لو. فلا یمنع المانعیت فیہ, بھائی دیکھو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر اپنے غلام کی آزادی کی قسم کھائی ہے تو یہ ایلا نہیں, کیونکہ اس شخص کے لیے ممکن ہے اپنے غلام کو بیچ دے اور پھر صحبت کر لے, تو دیکھو اس پر کوئی بھی چیز لازم نہیں آئے گی. تو معلوم ہوا یہ جو, توجہ سے سنو, یہ جو جزا تھی اگر میں نے صحبت کی تو میرا غلام آزاد ہے, یہ جزا مانع بنتی ہے. جزا کیا بنتی ہے؟ مانع بنتی ہے شرط سے, انسان شرط سے رکتا ہے جزا کے ڈر سے. بھائی تو جزا مانع بنتی ہے, لیکن یہ بیع کیا کرے گی؟ اس جزا کے مانع ہونے کو روک دے گی. امام ابو یوسف رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جزا جو ہے وہ مانع ہوتی ہے, لیکن بیع جو ہے اس کے مانع ہونے کو روک دے گی. بیع اس کے مانع ہونے کو روک دے گی, غلام کو بیچ دے اور صحبت کر لے. تو جزا مانع بنتی ہے, معلوم مانعیت کس میں ہے؟ جزا میں, اور بیع اس کے لیے کیا بن رہی ہے؟ مانع. معلوم ہوا بیع جو ہے یمنع المانعیت, وہ منع کرے گی کس کو؟ مانع ہونے کو. لیکن طرفین فرماتے ہیں کہ بیع تو ایک وہمی چیز ہے, لہذا یہ مانعیت کے لیے مانع نہیں بنے گی. بھائی یہ مانعیت کے لیے مانع نہیں بنے گی, یعنی یہ مانعیت کو منع نہیں کرے گی. یہی بات بیان کر رہے ہیں, فلا یمنع المانعیت فیہ, تو لہذا یہ جو بیع ہے یہ اس جزا کے مانع ہونے کو منع نہیں کرے گی, جزا پھر بھی مانع بنے گی, کیونکہ بیع تو یقینی نہیں. بیع یقینی ہوتی تو یہ مانعیت کو منع کر دیتی, لیکن بیع تو یقینی نہیں, یہ جزا کی مانعیت کے لیے مانع نہیں بن سکتی. ترجمہ سمجھ میں آ گیا, یہ معنی ہے فلا یمنع المانعیت فیہ, لہذا بیع جو ہے اس جزا کی مانعیت کو منع نہیں کرے گی. والحلف بالطلاق ان يعلق بقربانها, اور طلاق کے ساتھ قسم کی کیا صورت ہوگی وہ بھی بیان فرما رہے ہیں. والحلف بالطلاق, اور طلاق کے ساتھ قسم کھانا یعنی تعلیق کرنا, اس کی صورت یہ ہے, ان يعلق بقربانها طلاقها او طلاق صاحبتها, وہ یہ کہ اس بیوی کی صحبت کے ساتھ معلق کر دے, طلاقها اسی کی طلاق کو, او طلاق صاحبتها یا اس کی ساتھی یعنی سوکن کی طلاق کو, صاحبتها اس کی साथी यानी सौकन बई। तो मसलन खावन यूं कहता है अगर मैंने तेरे साथ सोहबत की तो तुझे तलाक है, या यूं कहता है अगर मैंने तेरे साथ सोहबत की तो तेरी सौकन को तलाक है। तो देखो तलाक को मुअल्लक कर दिया है सोहबत के साथ भाई। फिर तर्जमा देख लीजिए, वल हल्फ बि तलाक अन युअल्लिक बि क़ुर्बानिहा तलाकहा औ तलाक साहिबतिहा, और तलाक की कसम की सूरत यह है कि वो मुअल्लक करे उस औरत की तलाक को या इसकी सौकन की तलाक को इसकी सोहबत के साथ। व कुल्लु ज़ालिका मानिउन, और इनमें से हर एक मानिउ है, ये खावंद को रोकेगा शर्त से भाई यानी सोहबत करने से। आगे देखिए, व इन आला मीनल मुतल्लकति रजईयति काना मूलियन। सूरत मसला ये, खावंद ने अपनी बीवी को तलाक रजई दे दी है, अब वो इसके साथ ईला करता है तो क्या ईला हो जाएगा? कहते हैं हां, तलाक रजई वाली के साथ निकाह कायम है लिहाजा उसके साथ ईला हो सकता है, और तलाक बाइन वाली के साथ ईला नहीं हो सकता क्योंकि निकाह टूट चुका है भाई। तो कहते हैं वह इन आला मीनल मुतल्लकति रजईयति कान मूलियन, और अगर ईला किया मुतल्लक रजईया से तो यह ईला करने वाला है। वह इन आला मीनल बाइनति, और अगर मुतल्लक बाइना से ईला किया लम यकुन मूलियन तो यह शख्स ईला करने वाला नहीं है। लिअन्न ज़ौजियत क़ाइमतुन फिल ऊला दून सानियति, इसलिए क्योंकि पहली जो है उसमें ज़ौजियत मौजूद है कायम है, दून सानियति न के दूसरी में, यानी मुतल्लक रजईया के अंदर तो ज़ौजियत मौजूद है यानी निकाह मौजूद है और दूसरी में नहीं। वह महल्लुल ईला इमन तकूनु मिन निसाइना बिन नस्सी, और महल्ल ईला वो हैं मन तकूनु मिन निसाइना जो हमारी बीवियों में से हो। महल ईला क्या है? वो औरतें जो हमारी बीवियों में से हों वो हैं महल ईला, वो हैं महल ईला बिन नस्सी। किसकी वजह से? नस की वजह से। नस में कुरान में अल्लाह क्या फरमाते हैं? लिल्लदीन युलून मिन निसाइहिम, वो लोग जो ईला कर लेते हैं मिन निसाइहिम अपनी बीवियों से। देखा निसा की इजाफत है किसकी तरफ? हुम जमीर की तरफ। मालूम हुआ अपनी बीवी से ईला हो सकता है किसी दूसरी से नहीं, और जिससे तलाक रजई दी है वो अभी भी खावंद की बीवी है तो उससे ईला हो सकता है, और जिसको तलाक बाइन दे दी है उससे तो निकाह टूट गया है, वो तो अब इसकी बीवी नहीं है, बस इद्दत गुजारेगी फिर जहां मर्जी निकाह करे, और अगर खावंद ने भी रखना है दोबारा निकाह करना पड़ेगा भाई, तो तलाक बाइन वाली इसकी बीवी नहीं लिहाजा वो ईला भी वहां नहीं हो सकता। ये माना है वह महल्लुल ईला इमन तकूनु मिन निसाइना बिन नस्सी, और महल्ल ईला वो है जो हमारी बीवियों में से हो नस की वजह से। फलविन कजतिल इद्दतु कबलन किजाई मुद्दतिल ईलाई सकतल ईला उलिफवातिल महल्लियति। सूरत मसला ये कि मुतल्लक रजईया से खावन ने ईला कर लिया और फिर खावन ने रुजू नहीं किया, इद्दत गुजर गई, इद्दत गुजरी तो औरत खावन से जुदा हो गई, जब औरत खावन से जुदा हुई तो वो ईला जो खावन ने किया था वो खत्म हो गया क्योंकि महल ही ना रहा भाई, वो बीवी ही ना रही, निकाह टूट गया। कहते हैं फलविन कजतिल इद्दत कबलन किजाई मुद्दतिल ईलाई, अगर उस औरत की इद्दत गुजर गई ईला की मुद्दत गुजरने से पहले, सकतल ईलाऊ तो ईला साकित हो जाएगा। लिफवातिल महल्लियति, क्योंकि महल होना फौत हो गया, अब औरत महल ही नहीं ईला का, वो उसकी बीवी ही नहीं है। महल ईला तो क्या था? अपनी बीवी जो हो वो है महल ईला, और वो तो अब उसकी बीवी नहीं है भाई। और देखो साहिब हिदाया फरमा रहे हैं फलविन कजतिल इद्दत कबलन किजाई मुद्दतिल ईलाई, अगर इद्दत गुजर गई ईला की मुद्दत गुजरने से पहले, तो आपके जहन में आएगा भाई इद्दत तो सिर्फ तीन हैज हैं और ईला तो चार महीने है, तो यह बात तो यकीनी है कि इद्दत पहले गुजरेगी, ईला की मुद्दत पूरी होने से पहले ही इद्दत गुजर जाएगी, तो फिर यह क्या माना? फलविन कजतिल इद्दत कबलन किजाई मुद्दतिल ईलाई, अगर इद्दत पहले गुजर गई ईला की मुद्दत से, तो जवाब यह कि मैं पहले बता चुका हूं कि कभी कभार तोहर लंबा हो जाता है, औरत को हैज आता ही नहीं है कई कई माह तक भाई, तो अगर तोहर लंबा हो गया और तीन हैज नहीं पूरे हुए थे कि इसी दौरान ईला की मुद्दत पूरी हो गई भाई, फिर तलाक बाइन पड़ जाएगी उस औरत को। आगे देखिए, वलौ काल अली अजनबीयतिन वल्लाहि ला अक़रबू की औ अंति अलैया का ज़हरी उम्मी सुम्मा तज़व्वजहा लम यकुन मूलियं वला मुज़ाहिरन। एक शख्स है, उसने एक अजनबिया औरत से कहा कि वल्लाह मैं तुझसे सोहबत नहीं करूंगा। अजनबिया औरत है, बाद में इसने इस औरत से निकाह कर लिया, तो क्या अब ये ईला करने वाला है? क्योंकि इसने कसम खाई थी कि मैं तुझसे सोहबत नहीं करूंगा, तो क्या अब ये ईला है? और चार महीने अगर बगैर सोहबत के गुजरे तो तलाक हो जाएगी? कहते हैं नहीं भाई, ईला का महल अपनी बीवी है, और जिस वक्त इस आदमी ने कलाम किया था वो तो इसकी अपनी बीवी नहीं थी। जब अपनी बीवी नहीं तो इसका कलाम लग्व चला गया। बाद में इसने निकाह किया है, लेकिन वो कलाम तो एक दफा लग्व हो चुका, वो दोबारा नहीं आ सकता भाई। हां, कसम इसने खाई थी, वल्लाह मैं तुमसे सोहबत नहीं करूंगा। तो अब अगर सोहबत करेगा तो कफारा देना पड़ेगा, ईला नहीं है लेकिन कसम तो टूटेगी, तो लिहाजा कफारा देना पड़ेगा। दूसरी सूरत, एक शख्स एक अजनबिया औरत से जिहार करता है। जिहार आप पढ़ चुके हैं कि अपनी बीवी को उन औरतों के साथ तशबीह देना जो इंसान पर हमेशा के लिए हराम हो, यानी महरम के साथ, महरम के साथ बीवी को तशबीह देना। अंति अलैया का ज़हरी उम्मी, कि तू मुझ पर इसी तरह है जैसे मेरी मां के पुश्त भाई, मां है या बहन है या बेटी है या खाला है या फूफी है, ये जितने भी महरम है इनमें से किसी के साथ भी तशबीह देगा तो यह जिहार होगा भाई। और जिहार का कफारा आप पढ़ चुके हैं भाई, कि कोई शख्स जिहार कर ले अपनी बीवी से, जाहिलियत के अंदर तो वो औरत इंसान पर हमेशा के लिए हराम हो जाती थी, लेकिन इस्लाम ने कफारा बतला दिया कि शख्स ने नहायत नापसंदीदा बात की है लेकिन ये कफारा दे दे तो बीवी फिर हलाल हो जाएगी। और वो ये कि एक गुलाम या बांदी को आजाद कर दे, अगर उसकी इस्तेताअत ना हो तो 60 मुसलसल रोजे रखे, अगर उसकी भी इस्तेताअत ना हो तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे, तो फिर यह औरत हलाल हो जाएगी। तो अब एक शख्स ने एक अजनबी औरत से कहा अंति अलैया का ज़हरी उम्मी, और फिर बाद में इसे निकाह कर लिया, तो क्या यह जिहार शुमार होगा? कहते हैं नहीं, ये जिहार नहीं है, क्योंकि जिहार अपनी बीवी से किया जाता है और वह औरत तो अजनबिया थी, लिहाजा इसका वो कलाम लग्व चला गया। और अब जब निकाह करेगा और यह बीवी बनेगी तो दोबारा जिहार नहीं बनेगा, क्योंकि वह कलाम लग्व हो चुका। वलौ काल अली अजनबीयतिन, और अगर किसी शख्स ने किसी अजनबिया औरत से कहा वल्लाहि ला अक़रबू की, कि वल्लाह मैं तुझसे सोहबत नहीं करूंगा, औ अंति अलैया का ज़हरी उम्मी, या तू मुझ पर इसी तरह है जैसे मेरी मां की पुश्त, सुम्मा तज़व्वजहा, फिर उस शख्स ने बाद में उस औरत से निकाह कर लिया, लम यकुन मूलियं वला मुज़ाहिरा, न तो ये शख्स न तो ईला करने वाला है और न जिहार करने वाला, लिअन्नल कलाम फी मखरजिही वक़अ बातिलन, लिअन्नल कलाम, ये तर्जमा समझ लें इसका भाई, लिअन्नल कलाम फी मखरजिही, मखरज खराजा यखरुजु का माना है निकलना, यानी कलाम का अदा होना, कलाम का अदा होना, और मखरज ये इसमें जर्फ है, और जर्फ जिसमें वक्त या जगह का माना हो, यहां ये वक्त के माना में कर लें, मखरज यानी कलाम के निकलने का वक्त, यानी यूं कहें कलाम की अदायगी का वक्त, कलाम की अदायगी का वक्त। तो इस शख्स ने जिस वक्त ये कलाम किया था तो अदायगी के वक्त ही ये कलाम बातिल हो गया था, क्योंकि ये औरत इन चीजों का महल ही नहीं, ना वो ईला का महल है और ना जिहार का महल है, अजनबिया औरत है, तो अदायगी के वक्त ही ये कलाम क्या हो गया था, ये जो इस शख्स ने कसम का या जिहार वाला जुमला कहा, ये कलाम बातिल हो गया था। ये माना है लिअन्नल कलाम फी मखरजिही वक़अ बातिलन, इसलिए क्योंकि ये कलाम जो है अपनी अदायगी के वक्त ही बातिल हो गया था, लिन्इदामिल महल्लियति, महल ना होने की वजह से, क्योंकि वो औरत इसकी बीवी ही नहीं है भाई। फला यनकलिबु सहीहन बाद ज़ालिका, तो ये उसके बाद फिर दोबारा पलट कर सही नहीं हो सकता। उस वक्त तो वह कलाम बातिल हो गया, बाद में निकाह किया है, अब दोबारा वही कलाम पलट कर सही हो जाए, नहीं भाई, एक दफा बातिल हो चुका तो अब वो बातिल ही है, दोबारा पलट कर वो सही और दुरुस्त नहीं हो सकता। तो कहते हैं फला यनकलिबु सहीहन बाद ज़ालिका, तो ये पलट कर सही नहीं हो सकता उसके बाद। वह इन करीबाहा कफ्फारहा, हां अगर खावन ने इस औरत के साथ सोहबत कर ली, कफ्फारा फिर कफारा देगा, क्योंकि कसम खाई थी भाई, कसम खाई थी, तवज्जो है। तो वो जिहार वाले के अंदर कफारे की बात नहीं हो रही, वो जो वल्लाहि ला अक्रबु की ये जो कसम खाई थी इसका कफारा देगा। और अगर जिहार वाला जुमला कहा था शादी से पहले, उस सूरत में कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, कुछ भी नहीं आएगा भाई। तो कहते हैं वह इन करीबहा कफारा, और अगर खावन ने इस औरत से सोहबत की कफारा तो कफारा देगा। लितहक्कुकिल हिंसी, हानिस होना पाए जाने की वजह से, इज़िल यमीनु मुनअक़िदतुन फी हक़िही, इसलिए क्योंकि यमीन मुनअक़िद है, फी हक़िही ऐ फी हक़िल हिंसी, हानिस होने के हक में तो कसम मुनअक़िद हो चुकी है, उसको तोड़ेगा तो हानिस हो जाएगा। तो कहते हैं इदिल यमीन मुनअक़िदतुन फी हक़िही, इसलिए क्योंकि कसम मुनअक़िद हो चुकी है हानिस होने के हक में। व मुद्दतु इला इल अमति शहरानी, और बांदी की मुद्दत इला दो महीने है। लिअन्न हाज़िही मुद्दतुन ज़ुरिबत अजलन लिल बैनूनति, इसलिए क्योंकि ये जो मुद्दत है, कौन से मुद्दत, चार महीने जो मुद्दत इला बयान की गई है कुरान में। ज़ुरिबत, ज़रबा का एक माना है बयान करना। हादही मुद्दतुन, इसलिए क्योंकि ये ऐसी मुद्दत है, चार महीने जो हैं ये ऐसी मुद्दत है। जुरिबत अजलन लिल बैनूनती, इसको बतौर मुद्दत के बयान किया गया है, लिल बैनूनती जुदाई के लिए। ये जो चार महीने हैं ये ऐसी मुद्दत है जिसको जुदाई के लिए बयान किया गया है। तो कहते हैं लिअन हादही मुद्दतुन ज़ुरिबत अजलन लिल बैनूनती, इसलिए क्योंकि ये ऐसी मुद्दत है जिसको बयान किया गया है बतौर मियाद के, लिल बैनूनती जुदाई के लिए। फततनसफु बिर्रिक, तो ये मुद्दत आधी हो जाएगी बिर्रिक गुलामी की वजह से। का मुद्दत इद्दती, जैसे कि इद्दत की जो मुद्दत है वो आधी हो जाती है गुलामी की वजह से। आजाद औरत की इद्दत तीन हैज, तो बांदी की इद्दत निसफ होती है, यानी डेढ़ हैज होना चाहिए, लेकिन हैज की तो तंसीफ नहीं हो सकती, तो बांदी की इद्दत दो हैज है। तो जैसे इद्दत की जो मुद्दत है वो बांदी के लिए आधी है, इसी तरह ये ईला की जो मुद्दत है वो भी बांदी के हक में आधी होगी, यानी दो महीने भाई। आगे देखिए, व इन कान अल मूली मरीजन लायक दिरो अल जिमाई, अवकानत मरीजतन औरत का अव सगीरतन ला तुजा माऊ, अवकानत बैन हुमा मुसाफतुन लायक दिरो असिल इलैहा फी मुद्दतिल इलाई फफै उहू अयकूल बिलिसानी ही फी तु इलैहा फी मुद्दतिल इला। सूरत मसला ये कि अगर खावन सोहबत पर कादिर ही नहीं, सोहबत से आजिज है, या तो इस वजह से कि खावन बहुत ज्यादा बीमार है या बीवी बहुत ज्यादा बीमार है कि इस बीमारी की हालत में सोहबत मुमकिन ही नहीं है, या बीवी जो है सगीरा है, इतनी सगीरा है, इतनी छोटी है कि उसके साथ जिमा नहीं किया जा सकता, या बीवी जो है वो रतका है भाई। रतका याद रखो, रतका इसे कहते हैं कि औरत का सोहबत का मकाम बंद हो गई। मसलन एक औरत है किसी बीमारी मर्ज वगैरह की वजह से, अब उसके पेशाब का मकाम तो है लेकिन सोहबत का मकाम बंद है, तो इसको क्या कहेंगे, रतका भाई। तो अगर बीवी रतका है, खावन ने इला कर लिया, और इला किससे खत्म होता था, सोहबत से, लेकिन यहां तो सोहबत से आजिज है, सोहबत की सूरत ही नहीं है, या खावंद और बीवी एक दूसरे से इतनी दूर हैं कि मुद्दत इला के दौरान वहां पहुंचना मुमकिन ही नहीं है, तो इन तमाम सूरतों के अंदर कहते हैं जुबान से रुजो भी काफी है भाई, जुबान से रुजो भी काफी है। उस मुद्दत इला के अंदर खावंद कह दे फितु इलैहा, मैंने इसकी तरफ रुजो कर लिया, तो ये जुबान से रुजू भी हमारे नजदीक काफी है, लेकिन ये जरूरी है कि ये इजाज मुद्दत के पूरा होने तक इसी तरह रहे। अगर दरमियान के अंदर खावन सोहबत पर कादिर हो गया, मतलब दोनों में से कोई बीमार था वो तंदुरुस्त हो गया, वो खावन सोहबत पर कादिर हो गया है, तो फिर इस सूरत के अंदर अब जुबान से रुजू काफी नहीं, अब सोहबत ही करना पड़ेगी। कहते हैं वह इन कान अल मूली मरीजन, और अगर इला करने वाला मरीज है, ला यकदिरु अलल जिमाई, वो जिमा पर कादिर नहीं है, अवकानत मरीजतन, या उसकी बीवी मरीजा है, औरत का, या औरत क्या है, रतका है, यानी उसके सोहबत का मकाम ही नहीं है, औ सगीरतन, या वो बीवी ऐसी सगीरा है, ला तु जा माऊ, के इस जैसियों के साथ सोहबत नहीं हो सकती। अवकानत बैनहुमा मुसाफतुन, या इन दोनों के दरमियान इतनी मसाफत है कि ला यक़दिरु अन यसिल इलैहा फी मुद्दतिल ईलाई, कि खावन कादिर नहीं है कि बीवी तक पहुंच जाए मुद्दत ईला में। आजकल तो बड़ी तेज रफ्तार सवारियां आ गई भाई, लेकिन फिर भी बहरहाल एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने के लिए वीजा तो चाहिए होता है भाई, और वीजा कहां मिलता है और कहां नहीं मिलता। तो मसलन खावन वहां नहीं पहुंच सकता, तो कहते हैं फफ़ाय उहू अय्यकूल अभी लिसानी ही, तो फिर इसका फै यह है, इसका रुजू यह है कि खावन अपनी जुबान से यूं कहे फी तो इलैहा, कि मैंने इस बीवी से रुजू कर लिया। और कब कहेगा, फी मुद्दतिल इलाई, मुद्दत इला के अंदर अंदर। फइन काला ज़ालिका, जब खावन ने यह कह दिया सकतल इला, उ इला साकित हो गया, अब चार महीने के बाद बीवी जुदा नहीं होगी। وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا فيء الا بالجماع, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि रुजू नहीं है मगर जिमा के जरिए ही। वो फरमाते जिमा के जरिए ही रुजू हो सकता है, जुबान से रुजू नहीं हो सकता। व इलैह ذهب الطحاوي رحمه الله, और इसी की तरफ इमाम तहावी भी गए हैं। याद रखो इमाम तहावी भी फुकहाए अहनाफ में से हैं भाई, तो अहनाफ में से इमाम तहावी भी इसी तरफ गए हैं कि जुबान से रुजू नहीं हो सकता। कहते हैं इसी की तरफ व इलैहि ذهب التحاوي رحمه الله, और इसी की तरफ इमाम तहावी भी गए हैं। لأنه لو كان فيء لكان حنسا, इसलिए क्योंकि अगर ये फै होता तो ये हानिस होना भी होता। भाई देखिए फै के अंदर इंसान हमेशा हानिस होगा, जिसने भी ईला किया है और वो रुजू करना चाहता है तो रुजू के साथ ही वो हानिस होगा, क्योंकि रुजू कैसे होगा, सोहबत के जरिए, और उसने तो कसम खाई थी मैं सोहबत नहीं करूंगा, तो हानिस हो जाएगा, वो कसम का कफारा उस पर आएगा। और अगर उसने कोई तालीक की हुई थी तो वो जजा लाजिम आ जाएगी उस पर। तो मालूम हुआ ईला के अंदर जब भी फै पाया जाएगा हानिस होना जरूर होगा। लेकिन यहां पर अगर सिर्फ आप जुबान के कौल को ही फै करार दे दें तो फिर इस सूरत में सिर्फ फै पाया जा रहा है और हानिस होना तो नहीं है। ये शख्स हानिस तो नहीं है, इसने क्या कसम खाई थी, वल्ला मैं बीवी से सोहबत नहीं करूंगा, और सोहबत तो अभी भी नहीं मौजूद, लिहाजा हानिस नहीं हुआ। तो सिर्फ फै पाया जा रहा है और हानिस होना नहीं पाया जा रहा, हालांकि ईला के अंदर तो जब भी फै पाया जाएगा हानिस होना जरूर होगा। दोनों एक दूसरे के साथ लाजिम हैं, एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, जबकि यहां तो सिर्फ फै है और हानिस होना नहीं, लिहाजा इसको फै करार नहीं दे सकते, इसको हम फै करार नहीं दे सकते। लिया नहू लव काना फै अन लकान हिंसन, इसलिए क्योंकि अगर ये जुबान से कहना फै होता लकान हिंसन तो ये हानिस होना भी होता, लेकिन ये तो ऐसा नहीं है। वलना, और हमारी दलील यह है कि अन्नहु आजाहा बिदिक्रिल मनई फयकूनु इर्ज़ाउहा बिलवादी बिल लिसान, हमारी दलील यह है कि भाई देखिए यहां खावंद ने जुबान के जरिए सिर्फ बीवी को तकलीफ दी है, सोहबत से तो वो आजिज है भाई, वो बीमार है या बीवी बीमार है या कोई और रुकावट है, तो सोहबत से तो वो आजिज है। तो लिहाजा यहां पर जो खावन ने कहा कि वल्लाह मैं तेरे साथ कभी भी सोहबत नहीं करूंगा, या वल्लाह मैं तेरे साथ चार महीने तक सोहबत नहीं करूंगा, तो यहां खावन उसके हक जिमा को नहीं रोकना चाहता, क्योंकि जिमा तो उससे तो वो आजिज है भाई, वो सिर्फ जुबान के जरिए उसको तकलीफ दे रहा है कि वल्लाह मैं तेरे साथ चार माह तक सोहबत नहीं करूंगा। तो जब सिर्फ जुबान के जरिए तकलीफ दी है तो जुबान के जरिए ही रुजू काफी हो जाएगा भाई, क्योंकि जितना जुर्म है वो सजा भी उतनी ही होती है। वलाना, और हमारी दलील यह है कि अन्नहु आजाहा बिजिक्रिल मनई, कि खावन ने बीवी को तकलीफ दी है मना को जिक्र करके कि वल्लाह मैं तुझसे सोहबत नहीं करूंगा, सिर्फ मना को जिक्र किया है, वैसे तो वो सोहबत पर पहले ही कादिर नहीं। तो वलाना हमारी दलील यह है अन्नहु आजाहा बिजिक्रिल मनई, कि खावन ने बीवी को तकलीफ दी है मना को जिक्र करके, फयकूनु इर्ज़ाउहा बिलवादी बिल लिसानी, तो उस बीवी का राजी करना भी जुबान के जरिए वादे से ही होगा, और जुबान से इसने कह दिया कि मैंने रुजू कर लिया। व इजर तफा जुल्म ला युजाजा बितलाकी, और जब जुल्म उठ गया तो अब बदला नहीं दिया जाएगा तलाक के साथ, खावन ने जुबान से जुलम किया था उस जुलम की तलाफी कर दी तो अब जुलम खत्म। जब जुलम खत्म तो अब तलाक के साथ खावन को बदला नहीं दिया जाएगा, यानी निकाह खत्म नहीं होगा मुद्दत के गुजरने पर भाई। तो कहते हैं वह इजर तफा जुल्म, और जब जुल्म उठ गया तो ला युजाजा बि तलाक, तो अब इसका बदला तलाक के साथ नहीं दिया जाएगा। वलौ कदरा अलल जिमा फिल मुद्दती, और अगर खावन जिमा पर कादिर हो गया उस मुद्दत के अंदर, चार माह के अंदर अंदर कादिर हो गया, बतला जालिकल फैउ, तो वो जो फै किया था जुबान के जरिए वो बातिल हो जाएगा। वह सारा फैउहू बिल जिमाई, और इसका फै अब जिमा के जरिए होगा, अब इस मुद्दत के अंदर इसको जिमा करना पड़ेगा। लिअन्नहु कदरा अलल असली, इसलिए क्योंकि खावन जो है असल यानी जिमा पर ही कादिर हो गया है। कबल हुसूल मकसूद बिल खलफी, बदल के जरिए मकसूद के हासिल होने से पहले ही, बदल के जरिए मकसूद के हासिल होने से पहले ही खावन जो है असल पर कादिर हो गया। जैसे देखो एक शख्स तयम्मुम करता है और नमाज अभी उसने पूरी नहीं की कि इस दौरान कोई शख्स पानी लेकर आ गया, तो देखो मकसूद हासिल होने से पहले ही यानी नमाज के पूरा करने से पहले ही असल यानी वुजू पर यह शख्स कादिर हो गया, तो तयम्मुम खत्म, अब इसको दोबारा वुजू करके नमाज पढ़ना पड़ेगी। हां अगर नमाज पूरी कर ली फिर उसके बाद पानी आया तो अब वो नमाज हो चुकी है भाई। यहां भी इसी तरह है, अगर उस मुद्दत के गुजरने के बाद खावन जिमा पर कादिर हुआ फिर तो वो मुद्दत गुजर गई, ईला तो खत्म हो चुका है भाई, उसने जुबान से उस दौरान रुजू कर लिया था, लेकिन अगर उस मुद्दत के दौरान खावन जो है सोहबत पर कादिर हुआ तो अब वो असल पर कादिर हो गया, लिहाजा उसको सोहबत ही करना पड़ेगी, फिर ही ईला खत्म होगा, वैसे ईला खत्म नहीं होगा। कहते हैं लिअन्नहु कदरा अलल असल कबल हुसूल मकसूद बिल खलफी, इसलिए क्योंकि खावन असल यानी जिमा पर कादिर हो गया नाइब के जरिए मकसूद के हासिल होने से पहले ही, यानी फै बिल लिसान के जरिए मकसूद हासिल होने से पहले ही जिमा पर कादिर हो गया। वइदा काल लिमरअतिही अंति अलैया हरामुन सुइला अन नियति, सूरत है मसला ये, खावन ने बीवी से कहा अंति अलैया हरामुन, तू मुझ पर हराम है, तो मुझ पर हराम है, तो अब खावन से नियत पूछी जाएगी कि आपका क्या इरादा था। याद रखो यह बात पहले भी गुजर चुकी है, खावन अगर सिर्फ यह कहे अंति हरामुन, अंति हराम, तू हराम है, यह तलाक से किनाया है, यह तलाक से किनाया है। किनाया किसे कहते हैं, जिसमें तलाक का भी एहतमाल हो और गैर का भी एहतमाल हो। खावंद अगर बीवी से कहता है अंत हराम तो हराम है, तो खावंद से पूछा जाएगा आपकी क्या नीयत थी। अगर उसकी नीयत तलाक की थी तो तलाक वाकई होगी यानी तलाक बाइन, और अगर नीयत नहीं थी तो तलाक वाकई नहीं होगी। तो अंत हराम के अंदर तलाक वाला माना भी है कि तू मुझ पर हराम है क्योंकि मैंने तुझे तलाक दे दी है, या इसका यह भी माना है अंति हराम तू बाकियों पर हराम है क्योंकि तू मेरी बीवी है, तो इसमें दोनों माना है तलाक का भी और गैर तलाक का भी। लेकिन यहां अंति हराम की बात नहीं कर रहे, अंति अलैया हराम तू मुझ पर हराम है, खावन क्या कहता है तू मुझ पर हराम है, तो इसमें याद रखो खावन से नीयत पूछी जाएगी भाई। अगर खावन कहता है मेरी तलाक की नीयत थी तो इससे एक तलाक बाइन हो जाएगी, और अगर खावंद कहता है मेरी जिहार की नीयत थी तो जिहार हो जाएगा। अगर खावंद कहता है मेरी कोई नीयत नहीं थी या मैं बीवी से सोहबत को अपने ऊपर हराम कर रहा था तो फिर इस सूरत में ईला हो जाएगा। तो कहते हैं वह ईदा काल लिमरअतिही, और जिस वक्त खावंद ने अपनी बीवी से कहा अंति अलैया हराम तू मुझ पर हराम है, सुइला अन नियतिही, तो खावन से उसकी नीयत पूछी जाएगी। फइन काला अरतुल कज़िबा, अगर वो कहता है मैंने झूठ का इरादा किया था, मैंने तो वैसे ही एक झूठी बात की भाई, तो कहते हैं इस सूरत में उसकी तस्दीक की जाएगी क्योंकि झूठी तो बोल रहा है, ये क्या कह रहा है अंति अलैया हराम तू मुझ पर हराम है, हालांकि ये तो इसकी बीवी है, ये तो इस पर हराम नहीं है हलाल है, तो ये क्या कर रहा है झूठ ही तो बोल रहा है, तो अगर वो कहता है मैंने झूठ की नीयत की थी तो फिर उसकी तस्दीक की जाएगी भाई। तो कहते हैं फइन काल अरतुल कज़िबा, अगर खावन कहता है कि मैंने झूठ का इरादा किया था, फहुआ कमा काला, तो ये इसी तरह होगा जैसे उसने कहा। लिअन्नहु नवा हकीकत कलामी ही, इसलिए क्योंकि उसने अपने कलाम की हकीकत की नीयत की, अपने कलाम की हकीकत की नीयत की है। हकीकत क्या? कि तो मुझ पर हराम है और ये झूठ है भाई। हकीकत ये क्या है? ये झूठ है। तो हकीकी माना का इरादा किया और वो झूठ है और उसने भी झूठ का इरादा किया। तो कहते हैं लिया नहू नवा हकीकत कलाम ही, क्योंकि उसने अपने कलाम की हकीकत की नीयत की। वकील अला युसद्दकु फिल कजाई, और कहा गया है कि कजा के अंदर उसकी तस्दीक नहीं की जाएगी। मतन में तो आ गया फहुआ कमा काला, कि वो ऐसा ही है जैसे खावंद ने कहा। मालूम हुआ दयानतन भी खावंद की तस्दीक करेंगे, यानी उसके और अल्लाह के माबैन मामला है। दयानतन भी उसकी तस्दीक करेंगे, यानी फीमा बैनहू व बैन अल्लाह ताला, उसके और अल्लाह के बीच मामला है। हम कहते हैं आप ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। और कजाअन भी उसकी तस्दीक की जाएगी, लेकिन इमाम करखी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कजाअन खावन की तस्दीक नहीं की जाएगी। तवज्जो है? तो कहते हैं वकीला, और कहा गया है ला युसद्दकु फिल कजाई, की कजा के अंदर खावन की तस्दीक नहीं की जाएगी। लिअन्नहु यमीनुन जाहिरन, इसलिए क्योंकि जाहिर यही है कि ये यमीन है। वो अपनी बीवी को अपने ऊपर हराम कर रहा है, यानी उसकी सोहबत को अपने ऊपर हराम कर रहा है, लिहाजा इसको ईला करार दिया जाएगा। वह इन काला, और अगर खावंद कहता है अरद तु तलाका, कि मैंने तलाक का इरादा किया, फहिया ततलीकतुन बाइनतुन, तो ये एक तलाक बाइन होगी। इल्ला अय्यनविया सलासा, मगर ये कि खावंद तीन की नीयत करे। आपने पढ़ा है कि नायात के अंदर कि उनसे तलाक बाइन होती है, और अगर खावंद तीन की नीयत करेगा तो तीन भी वाके हो जाएंगी। तो यहां पर भी खावंद से नीयत पूछेंगे कि क्या नीयत थी। अगर वो कहता है मेरी तलाक की नीयत थी तो एक तलाक हो जाएगी, और अगर वो कहता है मेरी तीन तलाकों की नीयत थी तो तीन भी हो जाएंगी। ये माना है वह इन काल अरत तलाक फहिया ततलीकतुन बाइनतुन, और अगर खावन ने कहा मैंने तलाक का इरादा किया तो ये एक तलाक बाइन होगी। इल्ला अय्यन विया सलासा, इल्ला ये कि खावन तीन की नीयत करे तो फिर तीन भी हो जाएंगी। वकद जकर ना हुफिल की नायात, और तहकीक ये बात हम किनायात में जिक्र कर चुके हैं। वह इन काल आरत तो जिहार फहुआ जिहारुन, और अगर खावन ने कहा कि मैंने जिहार का इरादा किया है, फहुआ जिहारुन, तो यह जिहार होगा। अब बीवी हलाल नहीं होगी जब तक एक गुलाम या बांदी आजाद न कर दे, और अगर उसकी इस्तेतात नहीं तो फिर 60 रोजे रखे, अगर उसकी भी इस्तेतात नहीं तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना पड़ेगा, फिर बीवी हलाल होगी। तो कहते हैं वइन काल अरत तो जिहार फहुआ जिहारुन, और अगर खावन ने कहा कि मैंने जिहार का इरादा किया था तो यह जिहार है। वहादा आइंद अबी हनीफत व अबी यूसुफ रहिमहुमल्लाह, और ये शेखैन रहिमहुमल्लाह के नजदीक है। वो फरमाते हैं अगर खावन जिहार की नीयत भी करेगा तो जिहार हो जाएगा भाई। वकाल मोहम्मद उन रहमहुल्लाह लैसा बिज़िहारिन, और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि यह जिहार नहीं है। लिनइदाम तशबीह बिल मुहर्रमति, इसलिए क्योंकि मुहर्रमा के साथ तशबीह मादूम है। वो फरमाते हैं जिहार के अंदर तो जरूरी है, जिहार का रुकन है किसी महरम के साथ बीवी को तशबीह दे। आंति अलैया का ज़हरी उम्मी, तो देखा तशबीह जरूरी है, तशबीह रुकन है जिहार का, और रुकन के बगैर शय नहीं होती। तो यहां जब तशबीह नहीं तो यह जिहार भी नहीं है भाई। कहते हैं लिन इदामी तशबीह बिल मुहर्रमती, इसलिए क्योंकि मुहर्रमा के साथ तशबीह मादूम है। वह हुआ रुकन फीही, और तशबीह जो है यह तो रुकन है, रुकन है जिहार में। वलहुमा जी, शेखैन रहमतुल्लाह फरमाते हैं जिहार की नीयत करेगा जिहार भी हो जाएगा। वजह यह कि जिहार की वजह से भी एक नौ की हुरमत आ जाती है, और इस आदमी ने भी कहा है अंति अलैया हराम, इसने भी हुरमत को जिक्र किया है, लेकिन जिहार के अंदर एक खास नौ की हुरमत आई है कि बीवी को उसने तशबीह दिया था मुहर्रमात के साथ, और यह जो हुरमत जिक्र कर रहा है वह मुतलक है, अंति अलैया हराम, इसमें तो कोई वजह जिक्र नहीं। तो लिहाजा यह मुतलक हुरमत को जिक्र कर रहा है, लेकिन कहता है नीयत मेरी खास हुरमत की थी, वो जो जिहार से आया करती है, और मुतलक के जिमन में याद रखो मुकय्यद की नीयत ठीक होती है। मुतलक के जिमन में, मुतलक के जिमन में मुकय्यद की नीयत की जा सकती है। जैसे देखो एक शख्स कहता है वल्लाह ला आकुलु ताआमन, वल्लाह मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब ताआमन वो नकेरा लाया है, और ये तो हर खाने को शामिल है, लिहाजा जो भी खाना ये शख्स खाएगा ये हानिस हो जाएगा। लेकिन ये शख्स कहते हैं नहीं, मैंने तो फुला खाने की नीयत की थी, तो लफ्ज बोला ताम मुतलक भाई, और इरादा किसका किया, एक खास खाने का यानी एक मुकैद का, तो मुतलक के जिमन में मुकैद आ जाता है। लिहाजा फुकहा फरमाते हैं कि अब वही खास खाना जिसकी इसने नियत की है वो खाएगा तो हानिस होगा, कोई और खाना खाने से ये हानिस नहीं होगा। तो मालूम हुआ मुतलक जो है मुकैद का भी एहतमाल रखता है भाई। तो कहते हैं वलहुमा, और शेखैन रहिमहुमल्ला की दलील यह है कि अन्नहु अतलकल हुरमता, कि खावन ने हुरमत को मुतलक किया है यानी उसको मुतलक जिक्र किया है। वफिस जिहारी नौ हुरमतिन, और जिहार के अंदर भी एक किस्म की हुरमत होती है। वल मुतलक यहतमिलुल मुकय्यदा, और मुतलक जो है वो मुकय्यद का एहतमाल रखता है, मुतलक मुकय्यद का एहतमाल रखता है। और जो लफ्ज एक चीज का एहतमाल जब रखता है तो उसकी नियत की जा सकती है, अगर एक लफ्ज एक चीज का एहतमाल ही नहीं रखता तो उसकी नियत नहीं हो सकती। मसलन आप गाय को जिक्र करें और हाथी का इरादा करें, नहीं भाई, गाय के लफ्ज में हाथी का कोई एहतमाल नहीं, लिहाजा यहां हाथी की नियत सही नहीं। लेकिन एक लफ्ज में एक चीज का एहतमाल भी हो तो उसकी नियत की जा सकती है, लिहाजा खावंद अगर जिहार की नियत करेगा तो जिहार साबित हो जाएगा। अंति अलैया हरामुन से भाई। तो कहते हैं वल मुतलक यहतमिलुल मुकय्यदा, और मुतलक जो है वो मुकय्यद का एहतमाल रखता है। व इन काल अरदतु तहरीमा औ लम उरिद बिही शैआ फहुवा यमीन यसीरु बिही मूलिया, और अगर खावंद यह कहता है कि मैंने तो हराम करने का इरादा किया था यानी इसकी सोहबत को अपने ऊपर मैं हराम कर रहा था, या मैंने कुछ भी नियत नहीं की थी, तो फिर इस सूरत में ये ईला शुमार होगा। क्योंकि अगर उसने तहरीम का इरादा किया है कि मैं इससे सोहबत नहीं करूंगा, ये मेरे ऊपर क्या है, हराम है, तो इस सूरत के अंदर तो वो ईला ही की नियत कर रहा है। और अगर कहता है मैंने कोई नियत नहीं की तो भी इसको ईला पर ही महमूल किया जाएगा, क्योंकि जाहिर यही है कि वो बीवी को अपने ऊपर क्या कर रहा है, हराम कर रहा है। तो कहते हैं वह इन काला अरत तो तहरीमा, और अगर खावन कहता है कि मैंने तो हराम करने का इरादा किया था यानी इसकी सोहबत को अपने ऊपर हराम करने का इरादा किया था, अवलम उरिद भी ही शई आ, या मैंने इसके जरिए किसी भी चीज का इरादा नहीं किया, फहुआ यमीन यसीरु बिही मूलियन, तो ये यमीन है, इसे वो ईला करने वाला हो जाएगा। अगर उसने कोई नियत नहीं की या तहरीम की नियत की है तो ये ईला करने वाला हो जाएगा। लिअन्न अल असल फी तहरीम अल हलाली, इसलिए क्योंकि असल जो है ज़ाबता जो है फी तहरीम अल हलाली, हलाल को हराम करार देने में ज़ाबता ये है कि इन नमा हुआ यमीन उन इंदना की, हमारे नजदीक यमीन होती है। जब भी कोई शख्स एक हलाल चीज को अपने ऊपर हराम करार दे तो इंदल अहनाफ ये यमीन है, इंदल अहनाफ ये क्या है, यमीन है। और यहां पर भी वो क्या कह रहा है, मैंने तहरीम की नियत की थी, या कहता है मैंने कोई नियत नहीं की थी लेकिन लफ्ज तो तहरीम वाला बोला है, तो ये हमारे नजदीक क्या शुमार होगा, ये यमीन शुमार होगा। लिअन्न अल असल फी तहरीम अल हलाली, इसलिए क्योंकि ज़ाबता जो है हलाल को हराम करार देने में वो ये है कि इन्नमा हुआ यमीन उन इंदना, कि ये हमारे नजदीक यमीन है। हमारे नजदीक अगर कोई शख्स हलाल चीज को अपने ऊपर हराम करार देता है तो ये यमीन शुमार की जाती है, ये क्या है, यमीन है। और जब हराम करने की यमीन आ गई तो यही तो ईला है भाई, तो यहां भी क्या हो जाएगा, ईला हो जाएगा। तो कहते हैं लिअन्न अल असल फी तहरीम अल हलाली, इसलिए क्योंकि हलाल को हराम करार देने में ज़ाब्ता यह है कि इन्नमा हुआ यमीन उन इंदना, कि वो हमारे नजदीक यमीन है। वसनस्कुरुहु फिल ऐमानी, और अन करीब हम इसको जिक्र करेंगे किताबुल ऐमान के अंदर, ऐमान जमा है यमीन की। तो कहते हैं वसनस्कुरुहु फिल ऐमानी इंशा अल्लाह, और अन करीब हम इसको किताबुल ऐमान में जिक्र करेंगे इंशा अल्लाह। किताबुल ऐमान आगे आएगी भाई, वहां साहिब हिदाया जिक्र फरमाएंगे भाई। व मिनल मशाइख मन यसरिफु लफ्ज़त तहरीम इला तलाक मिन गैर नियतिन बिहुक्म अल-उर्फ वल्लाहु अलमु बिस-सवाब, साहिब हिदाया फरमा रहे हैं कि फुकहा में से बाज़ फुकहा ऐसे भी हैं जो इस तहरीम के लफ्ज को फेर देते हैं तलाक की तरफ बगैर नीयत के बिहुक्मिल उर्फी, उर्फ के फैसले से। याद रखो हमारे यहां भी यही उर्फ है भाई, ये बर्रे सगीर में भी यही उर्फ है। अगर खावंद अपनी बीवी को यूं कहे तू मुझ पर हराम है, तू मुझ पर हराम है, तो इसको उर्फ में तलाक समझा जाता है। तवज्जो है, हमारे उर्फ में इसको क्या समझा जाता है? तलाक समझा जाता है। लिहाजा जो भी खावंद अपनी बीवी को अगर यह कह दे तो मुझ पर हराम है, साथ ही तलाक हो गई। अब खावंद से नियत पूछने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि उर्फ में इसको तलाक ही समझा जाता है। तो यूं समझो ये तलाक के अंदर सरीह के दर्जे में हो चुका है। सरीह वो लफ्ज ना जिसके अंदर तलाक के अलावा और किसी चीज का इस्तेमाल ही ना हो। तू मुझ पर हराम है, अंति अलैया हरामुन, ये हमारे उर्फ में भी ये तलाक के लिए सरीह के दर्जे में हो चुका है। जब ये सरीह के दर्जे में हो चुका है तो सरीह के अंदर तो नियत नहीं पूछी जाती। खावन बीबी को अंति तालिकुन कह दे फौरन तलाक हो जाएगी, उसे नियत नहीं पूछी जाएगी भाई। तो लिहाजा ये सरीह के दर्जे में है। तो कहते हैं बास फुकहाफ के नजदीक ये उर्फ की वजह से ये लफ्ज सरीह के दर्जे में हो चुका है, लिहाजा इसकी वजह से फौरन तलाक हो जाएगी, इसमें नियत पूछने की भी जरूरत नहीं है। तो कहते हैं वह मिनल मशाइखी, और फुकहा में से बास जो हैं मैं यसरिफू, जो फेरते हैं लफ्जत तहरीमी, इस तहरीम के लफ्ज को इलत तलाक, किस तरफ फेरते हैं तलाक की तरफ कि ये तलाक है, मिन गैर नीयत, इन बगैर नीयत के, बगैर नीयत के हो तो ये तलाक है, बेहुक्मिल उर्फी, उर्फ के फैसले से, यानी उर्फ में लोग इसको तलाक समझते हैं। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब, और अल्लाह खूब जानने वाले हैं दुरुस्त बात को, अल्लाह खूब जानने वाले हैं दुरुस्त बात को। आगे देखिए भाई, बाबुल खुलई व इदा तशाक्का ज़ौजानि व खाफा अल्ला युकीमा हुदूद अल्लाहि फला बास बि अन तफ्तदिया नफ्सहा मिन्हु बिमालिन यख्लउहा बिही लिकौलिही तआला फला जुनाहा अलैहि मा फी मफ्तदत बिह। बाबुल खुलई, खुला का बयान आ गया भाई। याद रखो खुला इसे कहते हैं कि बीवी कुछ माल देकर खावंद से जुदाई को इख्तियार करे खावंद की रजामंदी से। खुला किसे कहते हैं कि बीवी कुछ माल देकर खावंद से जुदाई को इख्तियार करे खावंद की रजामंदी से भाई। और इस खुला का जिक्र कुरान और हदीस में भी मिलता है, मालूम हुआ खुला जायज है भाई। तो जरूरत के वक्त खुला करने में कोई हर्ज नहीं है भाई, लेकिन बगैर जरूरत की अगर कोई औरत खुला कर लेती है तो ये मासियत है और गुनाह है भाई, वो गुनाहगार होगी। अलबत्ता इंदा जरूरत खुला किया जा सकता है, लेकिन जरूरत के वक्त भी बेहतर यह है कि खावंद बगैर कोई इवज लिए औरत को तलाक दे जी। लेकिन अगर खावंद इवज ले लेता है तो यह भी उसके लिए जायज है भाई। और फिर इसमें यह भी याद रखना, यह जो खुला है यह तलाके बाइन के हुक्म में है। मसलन बीवी ने खावन से कहा कि मुझसे 10 लाख रुपए ले लो और मेरे साथ खुला कर लो। खावन ने कहा मुझे कबूल है, जैसे ही खावन ने कबूल है कहा साथ ही खुला हो गया और बीवी पर तलाके बाइन वाके हो गई और औरत के जिम्मे अब माल लाजिम हो गया, अब वो माल उसको देना पड़ेगा भाई। और फिर यह खुला चूंकि तलाक बाइन के हुक्म में है तो अब औरत को इद्दत गुजारना पड़ेगी, वो इद्दत गुजारेगी और फिर इद्दत के बाद वो जहां चाहे निकाह कर सकती है भाई। और आप जानते हैं कि इद्दत के दौरान भी खावन बीवी को तलाक दे तो वह तलाक वाके हो जाती है, लिहाजा इस इद्दत के दौरान भी अगर खावन तलाक देगा तो तलाक वाके हो जाएगी भाई। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह वगैरह के नजदीक खुला फस्खे निकाह है, यानी निकाह ही को खत्म कर दिया, गोया निकाह था ही नहीं ऐसा हो गया। तो जब खुला उनके नजदीक फस्खे निकाह है तो उनके नजदीक औरत पर इद्दत भी नहीं आएगी। अलबत्ता एक हैज वो इंतजार करेगी इस्तेबरा की तरह और फिर उसके बाद वो आगे निकाह कर सकती है। नीस इद्दत भी चूंकि इस औरत पर नहीं है लिहाजा खावंद मजीद तलाकें भी इसे नहीं दे सकता। और एक और कीमती बात याद रखना, भाई खुला के अंदर तलाक का लफ्ज नहीं जिक्र होता, खुला का लफ्ज जिक्र होता है। बीवी खावन से कहती है कि मुझसे खुला कर लो, और खावन कहता है मुझे कबूल है, मुझे मंजूर है, या खावन कहता है मैंने तुम्हारे साथ खुला कर लिया 10 लाख पर, और बीवी कहती है मुझे मंजूर है, तो खुला का लफ्ज जिक्र होगा, तलाक का नहीं। लेकिन अगर तलाक का लफ्ज जिक्र किया जाए, मसलन खावन कहते हैं मैं तुम्हें 10 लाख के बदले में तलाक देता हूं, या 10 लाख की शर्त पर तलाक देता हूं, तो फिर इस सूरत में याद रखो इसको तलाक अला इवज कहते हैं, इसको खुला नहीं कहते। खुला के अंदर खुला का लफ्ज होता है, तलाक का लफ्ज नहीं। और तलाक के लफ्ज के साथ अगर इवज को जिक्र किया जाए तो इसको तलाक अला इवज कहते हैं, यानी इवज की शर्त पर तलाक, या इसको तलाक बिल इवज कहते हैं। और याद रखो तलाक बिल इवज उसमें भी तलाक बाइन होती है
जी।
उसमें भी तलाक बाइन, तो हुक्म दोनों का एक ही है, तलाक आला इवज हो या खुला, दोनों में तलाक बाइन होगी भाई। तो हमेशा यह याद रखना, उमूमन तुलबा को खुला और तलाक आला इवज का फर्क का ही पता नहीं चलता भाई, तो खुला के अंदर तलाक वाला लफ्ज इस्तेमाल नहीं होगा भाई। देखिए भाई किताब पर, बाबुल खुलई, ये बाब है खुला के बयान में। वह ईदा तशाक ज़ौजानी, शाक का या शाकू के माने हैं लड़ाई झगड़ा करना, मुखालफत करना, यानी मियां बीवी में अगर लड़ाई झगड़ा आ जाए और मुखालफत आ जाए, अब खुशगवार जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है, तो फिर इस सूरत में खुला की गुंजाइश है भाई। कहते हैं वह ईदा तशाक ज़ौजानी, और जब मियां बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा आ जाए, वह खाफा, और इन दोनों को अब यह खौफ है, अल्लाह युकी मा हदूद अल्लाह, कि ये दोनों अल्लाह की हदूद को कायम नहीं रख सकेंगे भाई। खावंद के जिम्मे बीवी के हकूक होते हैं और बीवी के जिम्मे खावंद के हकूक होते हैं, तो ये अल्लाह की हदूद हैं। अब अगर इन दोनों के दरमियान जिंदगी खुशगवार नहीं रही, लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं, और दोनों को खौफ है कि ये अब एक दूसरे का हक अदा नहीं कर सकेंगे, तो फिर खुला की गुंजाइश है भाई। तो कहते हैं वखाफा अल्लाह युकीमा हुदूद अल्लाह, और दोनों को यह खौफ है कि वो अल्लाह की हुदूद को कायम नहीं रख सकेंगे, यानी एक दूसरे के हुकूक अदा नहीं कर सकेंगे। फला बस बी अंतफ तदिया नफसहा मिनहू, तो कोई हरज नहीं है, बी अंतफ तदिया नफसहा मिनहू, इफ्तिदा का माना है माल देकर छुड़ाना, फिदिया देकर छुड़ाना, फिदिया देकर छुड़ाना भाई। तो देखिए तर्जमा कहते हैं फला बासा, तो कोई हरज नहीं है, भी अंतफ्ता दिया नफसाहा, कि औरत छुड़ा ले नफसाहा अपनी जान को, अपनी जात को, मिन हु उस खावंद से, बिमाल इन ऐसे माल के इवज में, यखलाउहा बिही, कि खावंद खुला कर ले उसके जरिए बीवी से। तर्जमा समझ में आ गया। फिर देखिए कहते हैं वईदा तशाक़ ज़ौजानी, और जब मियां बीवी में झगड़ा हो गया, वखाफा अल्लाह युकीमा हुदूद अल्लाह, और इन दोनों को यह खौफ है कि वह अल्लाह की हुदूद को कायम नहीं रख सकेंगे, फला बासा, तो कोई हरज नहीं है, भी अंतफ्तदिया नफसहा मिनहू, कि बीवी जो है फिदिया देकर अपनी जात को खावन से छुड़ा ले, बिमाली यखलाउहा बिही, ऐसे माल के बदले कि जिसके साथ खावन उसके साथ खुला कर ले। लिकौलिहि ताला, अल्लाह ताला के इस कौल की वजह से अल्लाह कुरान में फरमाते हैं फला जुनाहा अलैहिमा, तो इन दोनों पर कोई हरज नहीं है, यानी मियां बीवी पर कोई हरज नहीं है, फी मफ्तदत बिही, उस बीवी के फिदिया देकर जान छुड़ाने में, इन दोनों पर कोई हरज नहीं है इस बीवी के फिदिया देकर जान छुड़ाने में, इन दोनों पर कोई हरज नहीं है, यानी बीवी पर माल देने में कोई हरज और गुनाह नहीं, और खावन पर माल लेने में कोई गुनाह और हरज नहीं। तो कहते हैं फला जुनाह अलैहिमा, तो इन दोनों पर कोई हरज नहीं है, यानी कोई गुनाह नहीं है, फी मफ्तदत भी ही, बीवी के माल देकर जान छुड़ाने में। फईदा फाला दालिका, जब वो ऐसा कर ले, वका बिल खुल तत्ली कतुन बा इनतुन, तो इस खुला से तलाक बाइन वाके हो जाएगी, वल्लाजीमा हल मालू, और औरत पर माल लाजिम हो जाएगा, वो उसको अदा करना पड़ेगा। लिकौलिही अलैहि सलाम, दलील जिक्र कर रहे हैं कि ये तलाक बाइन क्यों है, कहते हैं लिकौलिही अलैहि सलाम, हुजूर अलैहि सलाम के इस कौल की वजह से कि आपने फरमाया अल खुलउ तत्लीकतुन बाइनतुन, के खुला जो है वो तलाक बाइन है। वली अन्नहु यहतमिलु तलाका, अब अकली दलील भी जिक्र कर रहे हैं कि अकल भी यही कहती है कि इसे तलाक बाइन होनी चाहिए। कहते हैं वली अन्नहु यहतमिलु तलाका, और इसलिए क्योंकि यह खुला तलाक का एहतमाल रखता है, हत्ता सारा मिनल की नायाती, यहां तक कि यह खुला जो है कि तलाक के किनायात में से हो गया है। लिहाजा खावंद अगर अपनी बीवी से कहता है खालातु की, और नीयत किसकी करता है तलाक की, तो तलाक हो जाएगी, और इवज तो खावन ने कोई जिक्र नहीं किया, लिहाजा इवज नहीं आएगा, बस तलाक हो जाएगी। और कौन सी तलाक होगी? बाइन तलाक, क्योंकि किनायात के जरिए कौन सी तलाक होती है? बाइन तलाक होती है। तो खावन बीवी से कहता है खालातु की, और नीयत भी करता है तलाक की, तो तलाक वाके हो जाएगी। और कौन सी तलाक? तलाक बाइन। तो कहते हैं वली अन्नहु यहतमिलु तलाका, और इसलिए क्योंकि ये जो खुला का लफ्ज है ये तलाक का एहतमाल रखता है, हत्ता सारा मिनल की नायाती, यहां तक कि ये तलाक के किनायात में से हो गया है, वलवाकेउ बिल किनायाती बाइनुन, और वो तलाक जो किनायात से वाके होती है वो तलाक बाइन है। इल्ला अन्न ज़िक्रल माल अग़ना अनिन नियति हुना, मगर यह बात है कि माल के जिक्र ने बेनियाज कर दिया नीयत से होना। यहां पर भाई भाई बीवी खावन से खुला कर रही है तो यहां पर नीयत पूछने की भी जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि यहां पर माल साथ जिक्र हो रहा है। भाई मालूम हुआ तलाक ही का इरादा है, इसीलिए औरत माल जिक्र कर रही है। जैसे मुजाकरा तलाक, जब मुजाकरा तलाक में अगर खावंद की नाया लफ्ज इस्तेमाल करे तो वहां नीयत पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मुजाकरा तलाक ही दलील है, वो बतला रहा है कि किनाया खावंद ने जिक्र किया है और बातचीत तलाक की चल रही है, मालूम हो इसने तलाक ही का इरादा किया है। तो वहां जैसे मुजाकरा तलाक में खावंद की नीयत पूछने की हाजत नहीं, यहां पर भी खुला के साथ माल जिक्र हो रहा है, लिहाजा अब नीयत पूछने की हाजत नहीं। तो ये माना है वलवाकेउ बिल किनायाती बाइनुन, और वो तलाक जो किनायात के जरिए वाके होती है वो तलाक बाइन है। इल्ला अन्न ज़िक्रल माल अग़ना अनिन नियति हुना, मगर यहां पर माल के जिक्र ने नीयत से बेनियाज कर दिया। वली अन्नहा ला ततसल्लमुल माल इल्ला लितस्लम लहा नफ्सुहा वदालिका बिल बैनूनति अन्नहा, अब यहां से ये दूसरी अकली दलील जिक्र कर रहे हैं साहिब हिदाया कि खुला से जो तलाक होगी वो तलाक बाइन होगी। एक वजह क्या जिक्र कर दी कि हदीस के अंदर आया है, और दूसरी वजह क्या जिक्र की कि ये खुला ये तो किनायात में से है और किनायात के जरिए तलाक बाइन होती है। तो अब ये दूसरी अकली दलील जिक्र कर रहे हैं कि खुला की वजह से तलाक बाइन होगी। भाई तो कहते हैं वली अन्न हाला ततसल्लम उल माला, तसल्लमा का माना होता है वसूल करना, लेकिन यहां अदा करने के माना में है। मालूम हुआ तसल्लमा बमाने सल्लमा के है, सल्लमा युसल्लिमु तस्लीम का क्या माना है? सुपुर्द करना, अदा करना। तो कहते हैं वली अन्नहा ला ततसल्लमुल माला, और इसलिए क्योंकि औरत माल सुपुर्द नहीं करती, इल्ला लितस्लमा लहा नफ्सुहा, मगर यह कि सलामत रहे इसके लिए इसकी जात। सलीमा यस्लमु का एक माना जो है सलामत रहना, और इसी की तरह इसका माना खालिस होने के भी हैं। तो खालिस होना कर लें यहां तर्जमा, कि औरत जो है वो माल अदा नहीं करती, इल्ला लितस्लम लहा नफ्सुहा, मगर यह कि उस औरत की जात खालिस उसी के लिए हो जाए। पहले तो उसके अंदर खावंद का भी हक था, खावंद जब चाहे उससे सोहबत कर सकता है, लेकिन अब जब माल इवज में आ गया तो औरत माल खर्च कर रही है, और औरत तो उसी वक्त माल खर्च करने पर राजी होगी जब उसकी जात खालिस उसके लिए हो जाए। तो कहते हैं वली अन्नहा ला ततसल्लमुल माला, और इसलिए क्योंकि औरत जो है वो माल हवाले नहीं करती, माल अदा नहीं करती, इल्ला लितस्लम लहा नफ्सुहा, मगर यह कि उसकी जात उसके लिए खालिस हो जाए। वदालिका बिल बैनूनती, और यह तो बैनूनत के जरिए ही होगा, बैनूनत जुदाई के जरिए ही यानी तलाक बाइन के जरिए ही होगा, तलाक रजई के जरिए नहीं भाई। तलाक रजई के अंदर तो खावन सोहबत कर सकता है भाई, वो तो रुजू कर सकता है, तो तलाक रजई के अंदर औरत की जात और खालिस औरत के लिए नहीं होती भाई। तो लिहाजा खुला से तलाक बाइन वाकई होगी कि औरत की जात खालिस औरत के लिए हो जाए। बात समझ में आ गई, हल हो गया। चलिए बस भाई, हादा हुआ अल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।